गैर महसूस तरीके से हमारा अपनी सोसाइटी पे असर होता है ना, अनकॉन्शियसली भी बहुत कुछ हो जाता है, कॉन्शियसली तो दूर की बात है। चलिए, नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तमिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से इस्लाम ए टू ज़ी में से आज हम मुआमलात का दूसरा सेशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी तौर पर सब साथ है। कौन सा दिन है आज कोर्स का? डे 10 है। 9 दिनों में क्या किया? डे 1 पे क्या किया बोलिए बगैर सोचे। अकायद किए। अकायद में से क्या चीज़ सीखी? फिर नेक्स्ट थिंग, पूरा पहले वीक का क्या हमारा थीम था? नहीं, आप लॉस्ट है। चले मैं बोलती हूँ, आप लिखें, फिर कल आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 10 है इस्लाम ए टू ज़ी का। अभी तक जो कुछ पढ़ चुके, नंबर 1 इस्लाम, इस्लाम की दो बुनियादें हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, बल्कि आप कह सकते हैं कि इस्लाम के दो हिस्से, अल्लाह के हक और बंदों के हक, हकूकुल्लाह के फिर दो हिस्से अकायद और इबादात। हमने पहले 4 दिन में इबादात को सीखा, सॉरी पहले 4 दिन इस कोर्स के अकायद से मुतल्लिक थे, जिसमें ईमान बिल्लाह से लेके ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल तकदीर, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल मलाइका को हमने कदरे तफसील से देखा। इसके बाद दूसरा वीक जो डे 5 से लेकर 8 तक का था, उसमें हमने इबादात को देखा। पहले हमने इबादात की रूह को देखा कि इबादात होती क्या है और इसका इतना हमारी ज़िंदगी में गहरा असल क्यों है। और दूसरी बात यह है कि इबादात में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, जो मारूफ अकसाम है इबादात की, उसको हमने डिटेल से देखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3rd वीक है और उसका आज दूसरा दिन है, मुआमलात। कल के सेशन में हमने तफसील से देखा था कि मुआमलात की अहमियत क्या है और दीनदार सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है, और फिर हमने उसमें मामलाते बिन नफ्स यानी अपने साथ इंसान को कैसे सिंसियर होना है। जब तक हम अपना हक नहीं देंगे, हम दूसरों का नहीं दे सकेंगे। और उसके बाद फिर हमने कुछ आदाब सीखे थे कि जिन आदाब को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना हक अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम इसका दूसरा स्लॉट या दूसरा एक सेशन करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा मुआशरती मामलात। मुआशरा जिसमें मैं और आप रहते हैं, इस मुआशरे का हिस्सा हम सब हैं। जैसे अगर इस रूम में कोई एक शख्स आए और उसने परफ्यूम लगाया हो, तो उसके आते ही थोड़ी देर में सारे ही हॉल में खुशबू फैल जाएगी, और उस खुशबू को फैलता देखकर, इस खुशबू को महसूस करेंगे ना हम सब, और इसका ऑपोजिट भी होगा, और वो क्या होगा? उस खुशबू को महसूस थोड़ी कर सब करेंगे ना थोड़ी देर में। इसके बरक्स क्या हो कि अल्लाह ना करे अगर कोई बैड स्मेल वाला शख्स आ जाए या किसी के पास से कोई बैड स्मेल हो, तो थोड़ी देर में पूरे रूम में उसका असर महसूस होगा। जिस तरह खुशबू और बदबू फैलती है ना, इसी तरह मेरे आपके वजूद से मुआशरे में या तो अच्छाई फैल रही है या बुराई फैल रही है। हम में से हर एक अहम है और हम में से हर एक का एक असर है। सूरत यासीन आयत 12 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? मा कद्दमू व आसारहुम, जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो उन्होंने पीछे छोड़ा। और उनमें से आसार की 3 किस्मों में से एक क्या है? वाट एम आई गिविंग टू सोसाइटी, यानी वाट एम लिविंग बिहाइंड, यानी इफ़ेक्ट्स भी है और हमारे असरात यानी हमारे बाद क्या होगा वो भी है। तो गोया कि आप कह लीजिए कि हम सब अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ असरात रखते हैं। तो जो मुआशरती मामलात हैं, ये बुनियादी तौर पर सोसाइटी में हमारा क्या असर होता है, होना चाहिए। एक इंसान के साथ मुआशरा नहीं बनता। लफ्ज़ थोड़ा सा मुआशरती को मुआशरे में लीजिए, और आप इसको अपना जो शीट है वर्कशीट इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में लिख सकते हैं, मुआशरा क्या है, मुफाअला के वजन पे अशरा से, अशरा कहते हैं 10 को, तो मुआशरा अगर लफ्जी तौर पे देखें तो 10 लोगों का मिलकर रहना। जब बहुत सारे लोग किसी जगह मिलजुल कर रहते हैं तो मुआशरे का वजूद होता है। इंसान इज़ अ सोशल एनिमल, इंग्लिश में ये कहते हैं, ये जुमला कितना दुरुस्त है कितना नहीं दुरुस्त इसको हम नहीं छेड़ते, लेकिन इंसान अकेले नहीं रह सकता। अगर किसी इंसान को पैदा होते ही किसी जानवरों के किसी गिरोह के पास छोड़ दिया जाए तो वो बच्चा कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसी तरह याद रखिए कि अल्लाह के नबी की वो बात कि मिलजुल कर रहना और लोगों से तकलीफ़ों का पहुंचना और उस पर सब्र करना, ये बेहतर है इस बात से कि इंसान तन तनहा जंगल में रह जाए। कभी कभी शायद आपके भी जहन में आता होगा कि इतनी टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस, इतना करके भी कुछ नहीं मिलता, बेहतर है कि मैं अकेली रहूं। ना ये असूल आपका घर पे खुश रखेगा आपको, ना ख़ानदान से, ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ज़िंदगी का हुसन ये है कि मुख्तलिफ ही किस्म चीज़ों के बीच में आप खुश रहिए और खुश रखिए, और इसी का नाम है वतवासो बिलहक की वतवासो बिसबर। अब बात कर रहे हैं हम माशरती आदाब की। आप देखिए कि कई दफ़ा ऐसा नहीं होता कि घर में सिर्फ एक शख्स जो ज़रा सी नेगेटिव बात करता है पूरे घर का माहौल बदल जाता है। खाने की टेबल पे सब बैठे मज़े से बात कर रहे थे, किसी एक बात पे बाप को गुस्सा आ गया और सब पे गुस्सा, गुस्से का असर दिखा। माँ को कोई बात बुरी लग गई। बस दफा एक बच्चा ऐसा होता है कि जो पूरे घर का माहौल बिगाड़ देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ कोई एक ऐसा फ्रेंडली सा, जॉली सा, पॉजिटिव सोच रखने वाला मेहमान आता है तो वो वीक हमारी ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत वीक होता है। तो मुआशरती आदाब क्या हैं कि ऐसे मैनर्स एंड एटिकेट्स कि जिनकी मौजूदगी में आपका वजूद दूसरों के लिए खुशी का ज़रिया बने। यानी आज से अपनी ज़िंदगी का एक नया रुख मुतय्यन करेंगे आप और मैं, और वो क्या है, और वो क्या है कि हमने दूसरों को खुशी देनी है, खुशियाँ बांटनी है। ये आपका इस वीक का बहुत अहम गोल है कि आपने दूसरों के लिए दर्दे सर नहीं बनना, दूसरों के लिए टेंशन का ज़रिया नहीं बनना, उनका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ नहीं करना। बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली ही सही लेकिन दूसरों के दर्दे सर बन जाते हैं। हम इंशाल्लाह इसमें आज वो एटिकेट्स और मैनर्स सीखेंगे कि जिसकी वजह से हम किसी को मिलें तो अच्छी तरह से मिलें, किसी के घर जाएं तो वो हमें देखकर खुश हो, और अगर हम किसी को फ़ोन कॉल करें तो वो हमारी कॉल से ऑफेंड ना हो, हम मेहमान बनकर जाएं तो हम खुश हों, मेज़बान बने और भी खुश हों, किसी बीमार को देखने जाएं तो हम वो और भी ज़्यादा हमें देखकर खुश हो जाए। फिर इसी तरह मजलिस हो या कोई दोस्तियां हों, हम अपनी दोस्तों के लिए कैसे अच्छे बन सकते हैं। फिर इसी तरह तोहफा दें या लें, हम किसी रास्ते से गुजरे, क्या वो एटिकेट्स हैं कि जिनकी मौजूदगी हमारे वजूद को दूसरों के लिए खुशी का ज़रिया बना दे। और सफ़र करें तो लोग कहें बस हमें आप ही के साथ सफ़र करना है, किसी के गम को बांटने जाएं तो वो कहे कि आपके आने से हमारा गम हल्का हो गया, किसी की खुशी में जाएं तो अगला कहे कि आपने तो हमारी खुशी को दोबला कर दिया, और अगर हम किसी से गुफ्तगू करें तो फिर वो कहे कि आप बोलते जाएं, आप बात करते रहें और हम आपकी बात सुनते रहें। कॉन्वर्सेशन सही, डायलॉग सही, लेकिन अगला आपकी मौजूदगी से लुत्फानंदोज़ हो। फिर इसी तरह कभी आप मजाक के मूड में हों, आपको अच्छा लगे, जॉलीपन, तो लोग के वाह मज़ा आ गया, बहुत दिन बाद दिल से खुश हुए हैं, तो ये वो मैनर्स हैं जो आपको लोगों का पसंदीदा बना देंगे। एक बड़ा बड़ा जुमला लिख लीजिए, ये आज जो कुछ पढ़ने लगे हैं ना ये आपको लोगों का फेवरेट ही बना देगा। यू विल बी द फेवरेट पर्सन ऑफ योर होम, योर सोसाइटी, योर इन लॉज एंड एवरीवन। बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग कि जिनको अल्लाह सुबहाना ताला ये सारी खूबियाँ देता है। और आज आप देखेंगे कुछ चीज़ों को पढ़ते सुनते हुए कि हमारे ताल्लुकात बिगड़े क्यों हुए हैं, अक्सर हमारे माथे पे तेवरी क्यों रहती है, और इंशाल्लाह फिर हमारा अगला गोल जो होगा वो कुछ हकूक और फ़राइज़ का है, हम सोसाइटी में रहते हुए कुछ लोगों के हकूक़ कैसे दें, मसलन अहले इल्म के हकूक़, हमसायों के हकूक़, फिर इसी तरह से बुज़ुर्गों के हकूक़ हैं, माजूरों के हकूक़, मज़दूरों के, जानवरों के, हत्ता के, मोहताजों, यतीमों के, यानी बस सारी बात का एक खुलासा है कि आज के बाद मुझे दूसरों की खुशी के लिए खुशी का ज़रिया बनना है। कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी की ऐसी ना हो कि जो दूसरों के दिल में मेरे लिए नफ़रत भरे। पहले बताइए कि किस किस का ये गोल है और किसका ये जिस किस की राल टपक रही है कि आई विश आई विल बी द पर्सन। सब का प्यारा, सब के लाडले। और याद रखिए कि कुछ मोहब्बतें अल्लाह ने दे दी हैं, उसमें तो कुछ अच्छे बने बुरे बने वो मोहब्बतें होती ही रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मुझे आपको लेना पड़ेगा, जिसको मुझे आपको मांगना पड़ेगा, और उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको बना दे। इसलिए आज के ग्रुप सेशन को हम छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे ताकि डे टू डे ज़िंदगी में जो चीज़ें आती जाती हैं हम उसकी गाइडलाइन लेते रहें और फिर हमारे वजूद से दूसरे लोग ये चीज़ें सीखेंगे, और जितना वो सीखेंगे इतना इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उनको हमारी इन चीज़ों से खुशी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैनर्स और एटिकेट्स हम सीखेंगे आज की इस नशिस्त में वो है सलाम के आदाब, क्योंकि दीन है इस्लाम और किसी से मुलाकात का आगाज़ होता है सलाम से। तो सलाम करने के बारे में इस्लाम क्या कहता है, आप देखिए कि अगर हम लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू को देख लेना तो हमें इसकी सारी रूह समझ आ जाएगी। तुम सलामत हो मुझसे, ये किस्म की कन्फर्मेशन है, अगले को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि यू विल बी सिक्योर फ्रॉम मी, आई विल नॉट बैक बाइट यू, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, आई एम नॉट योर एनिमी। किसी भी इंसान को मिलते वक्त जब आप उसको सलाम करते हैं तो बेसिकली आप उसको पीस का मैसेज देते हैं। इस्लाम अमन का, पीस का मैसेज देता है और सलाम को आम करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। आपको मुझे इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इब्ने हब्बान की रिवायत है 508, इस्लाम की बेहतरीन खूबियों में से सलाम करना और सलाम को फैलाना है। कल के सेशन में भी हमने वो हदीस दोबारा नोट की थी कि चार काम करो जिसमें पहला काम क्या था, अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, और उसका एंड क्या है, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी बात है सलाम क्यों आम करें। सलाम को फैलाना ऐसे अमाल में से है जो जन्नत को वाजिब कर देते हैं। अस-सिलसिलातु सहीहा 1468। फिर इसी तरह से सलाम को फैलाना दुनिया और आखिरत में सलामती का सबब बनता है। बुखारी अल अदबुल मुफरद, ये भी इमाम बुखारी ही की किताब है, इसमें ये रिवायत मौजूद है, आप देख सकते हैं 979 और 787, और सहील जामे में भी है 1097। फिर सलाम क्यों फैलाएं, क्योंकि इसको फैलाना दरजात की बुलंदी का ज़रिया है दुनिया और आखिरत में, सहील जामे 1088। और जो रिवायत कल भी थी आज दोबारा नोट कर लीजिए, बुखारी 12 और मुस्लिम 160, कि आपने फरमाया तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो और जिसको ना पहचानो इसको भी सलाम करो। तो आप कह सकते हैं कि सलाम करना और इसका जवाब देना ये मुआशरे में मोहब्बत को आम करना है, मुस्लिम की रिवायत 54। करें क्या, चंद मैनर्स नोट कर लीजिए, इसी बॉक्स में कोशिश कीजिएगा छोटा छोटा करके लिखें ताकि ये आपके पास फिर बाद में एक छोटा सा हैंडआउट तैयार हो जाए हर मौजू पे। पहली बात है कि जब भी किसी से मुलाकात करें पहला काम सलाम। दलील अबू दाऊद 4084 और तिरमिज़ी 2721। फिर दूसरी बात इसमें जो आपके मेरे लिए है वो क्या है कि जब भी सलाम करा जाता है, यानी जब आप सलाम करें तो खंदा पेशानी से करें, विद स्माइल, जिसको आप कहते हैं कि सलाम विद स्माइल। स्माइल एंड सलाम इज सुन्ना। जब चेहरे पे स्माइल हो और ज़ुबान पे सलाम हो, ऐसा बंदा दूसरों के दिल में अपनी जगह बनाता है। देखिए माजरत के साथ, ज़रा सा अपने ऊपर ले, मेरा फेस कैसा है, हर एक अपने आप से पूछे एम आई स्माइली पर्सन। आप कहते हैं लो इतने सदमों, इतने दुखों, इतने प्रॉब्लम्स में स्माइल मेरे से नहीं होता, तो ज़रा सा लुक डाउन नीचे तो देखिए, कितने लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा हार्ड लाइफ गुजार रहे हैं लेकिन उनके चेहरों से स्माइल कोई नहीं छीन सका। ज़िंदगी के चैलेंजेस को स्माइल के साथ बीट कीजिए, स्माइल से एनर्जी मिलती है, सलाम करने से आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, बल्कि माशरती आदाब और मामलात में लिख लीजिए कि मेरा आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने इर्द गिर्द वालों को स्माइली फेस से मिलें। मेरी अगर सिर्फ इतनी बात सुनकर अगर आप में से कोई उठ जाता है ना, तो आज के लिए ये काफ़ी है, यू कैन गो, और कुछ नहीं दे सकते ना किसी को। तो आप सलाम के साथ स्माइल देते जाइए, आप फील करेंगे कि आप लोगों के बहुत सारे मसाइल का हल देंगे। आज लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, हर एक अपने आप को लेकर सोचे कितना मुस्कुराती हूँ। आप कहते हैं वो मुस्कुराती थी जब अम्मा अब्बा के घर थी, और मुस्कुराती थी जब ससुराल जिंदगी में नहीं आए थे, और ये ससुराल इसने तो मेरी स्माइल ही छीन ली। तो फिर आपसे ज़्यादा दुखी बंदा नहीं हम आपके घर आएंगे ताज़ियत करने, हर सदमा हर गम आपकी जान पे अल्लाह ने तोड़ दिया। याद करें आप स्माइली रहें, आप अपने आप को स्माइली रखें, दुख बीमारियां परेशानियां स्ट्रेस गुर्बत हत्ता के झगड़े की नौबतें आई भी खत्म हो जाएंगी। तो चेहरे पे स्माइल रखें। आज के बाद आपके फेस कैसे होने चाहिए? स्माइली। किस लिए करना है? सुनना समझ के करना। नबी सलम से ज़्यादा कोई स्माइल नहीं देता था। फिर इसी तरह से याद रखिए कि सलाम की दुआए मुलाकात की हिर्स रखनी चाहिए, और मुसलमानों का ये शौर है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या मुलाकात के वक्त पर बात होगी। आप कहते हैं कि फरिश्तों और जन्नतियों की दुआए मुलाकात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू होगी। दलील लिखनी है तो लिख लीजिए, तिर्मिज़ी 3368। फिर इसी तरह पूरा सलाम कहने की हिरस रखनी चाहिए, इसका अजर बहुत ज़्यादा है, अबू दाऊद 5196। फिर जिसको सलाम किया जाए इस पर जवाब देना वाजिब है, बुखारी 1240 और मुस्लिम 5650। सलाम का ज़्यादा बेहतर या फिर उस जैसा जवाब देना चाहिए, सूरत निसा 86। वाइज़ा खुशी तुम भी तहैयतिन फतहैयु बियाख्सनी मिनहा और उद्दूहा। अच्छा स्माइल दीजिए। फिर इसी तरह से इस तरह सलाम करना जैसे यहूद करते थे, मसलन सामुलैकुम, नबी सल्लम को यहूद ने इस तरीके से सलाम किया, असल में एक बद्दुआ देते थे लेकिन हकीकत में वो उनके दिल का बुग़्ज़ था, तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। इसको मुर्दों का सलाम कहा जाता है, मुसनद अहमद की रिवायत 482 जिल्द 2 में ये बात मौजूद है। फिर इसी तरह अहले किताब और गैर मुस्लिमों के सलाम से मुशाबहत हराम है, तिर्मिज़ी 2695। क्या पता चला, जैसे हाथ की उंगली से इशारे से बाज़ लोग गुड मॉर्निंग गुड बाय सीने पे हाथ रख कर झुकते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, सही तरीके से सलाम करें। फिर इसी तरह गैर मुस्लिमों से जब बात शुरू करें तो आप उनसे सलाम नहीं करेंगे, वजह उनको इस्लाम नहीं पसंद तो आप उनको क्यों बॉदर करते हैं। सलाम मुसलमान के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, तो फिर उनको आप हेलो हाय बाय जो मर्ज़ी कह लीजिए, लेकिन मुसलमानों के लिए आपस में एक दूसरे के लिए जो भी बात होगी वो अस्सलामु अलैकुम होगी। फिर इसी तरह से गैर मुस्लिम आपको सलाम करें तो वालेकुम कह दीजिए, बुखारी की रिवायत है 6026 और मुस्लिम 5656। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कौन किसको सलाम करे, नोट कर लीजिए, सवार पैदल को करेगा, क्यों? अकड़ ख़त्म होगी कि मैं लैंड क्रूज़र में बैठा हूँ, ये बेचारा बेचारा जूतियाँ चटकता हुआ जा रहा है, तो अकड़ ख़त्म भी होती है। और सवार शख्स मैसे घोड़े से गुजर घोड़े पे बैठा कोई गुजर रहा है पैदल शख्स पास से, तो पैदल को ये सलाम करेगा। फिर थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को करेंगे। फिर इसी तरह पैदल खड़े हुए शख्स को करेगा, और छोटा बड़े को सलाम करेगा, ये बुखारी की रिवायत में सब बातें मौजूद हैं, 6231। फिर इसी तरह मजलिस से उठते और बाहर निकलते हुए सलाम करना चाहिए। आम तौर पर लोग मजलिस में दाखिल करते हुए सलाम करते हैं मगर बाहर निकलते हुए नहीं करते, तो ये खिलाफ़े सुन्नत है, तिर्मिज़ी 2706। इसी तरह जब मजलिस में दोबारा वापस आएँ तो सलाम करना चाहिए, क्योंकि सलाम फैलाना मोहब्बत में इजाफे का सबब है। फिर इसी तरह आमने सामने सलाम करते हुए एक दूसरे के हाथ थाम कर मुसाफा करना चाहिए, जिसको शेफन। ये जो मुसाफा है ना, ये सफ़ेहा से है, स्वाद फाहा सफ़ुन वसफ़ सफ़ुन जमीला, ग़ालिबन सूरह हिजर में आता है। तो हथेली ये पाम को कहते हैं, ये देखिए ऐसे हथेली से हथेली मिलती है ना, तो सफ़ ये जो आप सफ़े पलटते हैं पेजिस, ये भी यही है, सफ़ा पलटते हैं ना, तो सफ़ुन होते जाने दो, दरगुजर, इग्नोर ग्रेसफुली। तो लिहाजा इस मुसाफा किया जा सकता है, इसका अजर भी है और मुसलमानों के आपस में मोहब्बत को बढ़ाने वाला अमल भी है। तिर्मिज़ी 2727। फिर इसी तरह जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ आ जाए, यानी आप इकट्ठे जा रहे थे, बीच में एक दरख्त आ गया, कुछ लोग दरख्त के इधर से निकले, कुछ उधर से निकले, जब दोबारा आपस में मिलें तो फिर सलाम को दोहराएं। ये नबी सल्लम की सुन्नत भी है और सहाबा का अमल भी है। सहील जामे 355। फिर इसी तरह से मस्जिद में दाखिल हुए, तहैयतुल मस्जिद पढ़े बगैर सलाम नहीं करना चाहिए, तिर्मिज़ी की रिवायत है 5757। इसी तरह सलामु कबलल कलाम, सवाल और कलाम से पहले सलाम कीजिए, सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है 816। बच्चों को सिखाइए, मैं आपको यहाँ घर के बच्चों का झगड़ा ख़त्म करने का एक राज बताती हूँ। अमूमन क्या आ रहा है, बच्चा आया, भागा 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 भागा, पता नहीं क्या हो गया, मुकदमा लेकर आया है, छोटे ने ये मारा, उसने ये ले लिया, वो किया, आप खामोश रहें, क्या कहें, अस्सलाम क़बलल कलाम, पहले सलाम करो। अब जब वो सलाम करेगा ना, वो सारा जोश ठंडा हो चुका होगा, तो वो भाई के बारे में जो मुकदमा था वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बच्चों को सलाम की आदत से आप उनकी क्रैंकीनेस, जिद्दों से रोक सकते हैं। बच्चा रो रहा है, मामा ओ रो रहा है, चू चू कर रहा है, माँ उसको खामोशी से सलाह, पास आए अस्सलाम वालेकुम, भूल जाएगा। बिलीव मी कि इस्लाम का हर हुक्म हिकमत से भरा हुआ है। आप सलाम करें, शौहर को गुस्सा आ गया, चीख रहे हैं, किधर है, कि आप जाकर के अस्सलाम वालेकुम, फिर क्या होगा, ये आप कल बताइएगा क्या हुआ है। फिर इसी तरह से कज़ाए हाजत में कोई है, वॉशरूम के अंदर है, उसको सलाम नहीं करना चाहिए, अबू दाऊद 17 है। सोने वालों के पास जाएं तो पस्त आवाज़ में सलाम करें, नबी सल्लम सोने वालों के साथ आप जाते तो कुछ लोग सो रहे होते और कुछ जाग रहे होते, तो इतनी आवाज़ में सलाम करते कि जागने वाले सुन लें और सोने वाले बेदार ना हों। मुस्लिम की रिवायत है 5362। बच्चों के पास से गुज़रते हुए इनके दिलों को खुश करने के लिए सलाम करना है। अभी मैं ये सुन्नत पे अमल करके आई हूँ, बच्चों को हमेशा मिलती हूँ, सलाम शेक हैंड जो कर सकती हूँ करके आती हूँ। इसकी दलील है बुखारी 6247 और मुस्लिम 5663। फिर जिस मजलिस में मुसलमान और मुशरिक इकट्ठे हों, उसमें क्या किया जाएगा, सलाम किया जाएगा मुसलमानों की नीयत से, ठीक है, इस्लाम के हक़ की तज़ीम के लिए, बुखारी 6254। इसमें एक दो जुमले भी हैं, मुश्किल लगते हैं आपको, लेकिन बाज़ हमारे असलाफ इसी तरह करते थे, अस्सलामु अलैकुम मनेहतबिल हुदा, सलाम तो सिर्फ उसके लिए जो इसने हिदायत की पैरवी की, तो मुराद है कि मुस्लिम इसका जवाब दे रहे हैं। फिर इसी तरह औरतों की मजलिस के पास से गुजरते हुए भी सलाम करना चाहिए, अबू दाऊद 5204, तिर्मिज़ी 2697। जब कोई ना सुने तो 3 बार सलाम को दोहराइए, बुखारी 6244। अगर कोई फासले पर हो और ना सुन पाए फिर क्या करें, तो फिर 3 बार आप भी सलाम करके पीछे हो जाइए कि उस तक आवाज़ नहीं पहुंची, कोई बात नहीं। किसी दूसरे का सलाम पहुंचाया जा सकता है, ये अक्सर हमें सलामों के पोटले पकड़ाते हैं लोग, मेरा सलाम क्या, अच्छा मुझे फ़ोन कोई करता है सलाम, अच्छा सबको सलाम दें, तो मैं सुबह उठ के अटलांटा के पूरी लिस्टें खोलूँ और सबको सलाम दूंगी। मैं कह देती हूँ भाई जिसको मैं दे सकी, मैं भी, अच्छा कोई कहते दुआओं में याद रखे, जब भी दुआ करें हमें दुआ में याद रखे, भाई इज़ इट पॉसिबल, तो मैंने कहती मैं आपको अभी दुआ दे देती हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। तो बस बोझ कंधों पे लेकर फिरना बहुत मुश्किल होता है, तो लेकिन अगर कोई दूसरा आपको सलाम कहे तो उसको पहुँचाना मुस्तहब है। بخاری کی روایت ہے 6253، مسلم 2747. جب انشاءاللہ یہ کورس ہم کو ایک سال میں کریں گے نا، پھر یہ ساری حدیثیں بھی ساتھ سناؤں گی جن کا صرف ریفرنس ہے، کیونکہ حدیث میں اتنا خوبصورت واقعہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ دل چاہتا ہے سنانے کو لیکن ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. بہرحال قصہ مختصر، سلام کیجئے، اسے دل نرم ہوں گے. اور شریعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے، خوشیاں بانٹیں. آج لوگوں کے پاس مال بہت ہے، خوشی نہیں ہے. آج مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپس کے اندر وہ محبت اور وہ چیزیں نہیں دکھتی کہ جو حقیقت میں دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دیں. تو آپ جب سلام کیا تو پھر اس کے بعد اگلی چیز جس کو ہم دیکھیں گے وہ ہے ملاقات کرنا. ملاقات کرنا، دوسرے کو ملنا، کیا اس کا بھی دین میں کوئی حصہ ہے؟ کیا اس کو ہم دین کہیں گے؟ تو وہ حدیث صرف ایسے ہی سن لیجئے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، فرشتے نے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہاں فلاں شہر میں جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہاں وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، مجھے اسے اللہ کے لیے پیار ہے. کہا کیا تم صرف اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا ہاں. اور کوئی کاروبار، کوئی ریزن؟ کا کچھ بھی نہیں. تو کہا اچھا، پھر خوشخبری ہے کہ تم اس کو اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہو. تو اس پہ یعنی انہوں نے پھر ایک بہت بڑا ان کو اجر اور ثواب کا کی خوشخبری دی. تو یاد رکھیے کہ ملاقات کرنا یہ ہماری سوشل لائف کا ایک حصہ ہے، جس کو آپ سوشلائزنگ کہہ لیجئے، جس کو ملنا جلنا کہہ لیجئے. یہ بعض دفعہ فرض ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سنت ہے، بعض دفعہ مستحب ہو جاتا ہے. انسان کو اپنے بھائی، دوست، ہمسائے، ان سے ملنا بہت اچھا لگتا ہے، خاص طور پہ لائک مائنڈڈ لوگ جن سے دل ملتے ہوں اور جو خاص طور پہ کام بھی ساتھ ہی کرتے ہوں تو ان سے ملنا اچھا لگتا ہے. لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ملاقات کے وقت مسکراہٹ اور بشاشت، خوشگوار تاثرات دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت بھر دے گا، مسلم 2626. پھر جب ملنے جائیں تو چہرے پہ تھکاوٹ اور ناپسندیدگی کے آثار نہ ہوں، اس سے محبت بھاگ جاتی ہے اور شیطان کی آمد کا دروازہ کھل جاتا ہے، آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ جو ہم کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، مثلا اگر کسی نے آپ سے کہا کہ آج شام کو ہمارے گھر آئیے گا، مل کے بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، اب آپ بال بکھرے، منہ ایسا نچا ہوا اور گدے لگی ہوئی پہنچ جاتے ہیں، وہ سوچے کہ اس کو میرے گھر آنے کی خوشی نہیں ہوئی. اور سیم تھنگ جب آپ اس کے گھر گئے اور وہ آگے سے ایسے لٹے پٹے حال میں بیٹھا ہے، خوشی نہیں ہوگی. یہ جو ہم اچھا ڈریس اپ ہوتے ہیں یا ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا، تو اصل میں ہم اگلے کو عزت دیتے ہیں کہ آپ میرے گھر آئے، میں آپ کو دیکھنے ملنے کے لیے کتنی خوش ہوں. ٹھیک ہے، تو کسی کے پاس بھی جائیں تو پہلے اپنا موڈ ٹھیک کریں، پہلے اپنا حال حلیہ ٹھیک کریں، اس طریقے سے جائیں کہ جس میں وہ دیکھ کر آپ کو اس خوش ہو کہ آپ نے واقعی اس کو عزت دی ہے. پھر اسی طرح ملاقات کے وقت سلام، جو پیچھے بات ہو گئی، دل بھی دور ہوں تھے تو قریب ہو جائیں گے، شیطان دور ہوگا تو رحمان سے قربت ہوگی، اور مسلم 54 میں یہ بات موجود ہے. اور سلام کو ترک کر دینا اور سستی برتنا یہ دشمنوں کی کھیتیاں اگانے کا ارادہ کرنا ہے. یاد رکھیے، سلام کے بغیر جب آپ کسی سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں تو دلوں میں سے محبت اٹھ جاتی ہے اور ایک قسم کا بوجھ پڑنے لگ جاتا ہے. پھر اسی طرح جب ملاقات کرے تو مرد مرد سے ہے، عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے، ہاتھ کو ہاتھ میں لینا ہے، لیکن اتنا نہ دبائیں کہ اس کے ہاتھ بیچارے چھل جائیں، اور اگر ہاتھ میں کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو وہ اس کی دوسری انگلی میں کھب جائے. اور بعض لوگ تو ایسے پھر ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں کہ چھڑوانا پڑتا ہے اللہ کے واسطے میرا ہاتھ چھوڑ دیں. یہ جذباتی پن اچھا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ مسافہ کرنے سے تعلق اچھا ہے، ٹچ ہے نا، ہیومن ٹچ کے اندر ایک فیلنگز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک قسم کا ایک ریموٹ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، کئی چیزوں کو آپ اسے ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ بچے کو آپ ٹچ کریں گے، گداس محسوس ہوگا، سافٹنس محسوس ہوگی. آج آپ جتنا مرضی اسکائپ پہ، فیس ٹائم پہ اور وائبر پہ، واٹس ایپس پہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں، صورتیں دیکھیں، اتنی ڈرونی شکل دکھتی ہے، میں تو آج تک کبھی دکھائی نہیں ہے، اسی خوف کے مارے کہ وہ کہیں گے تمہیں یہاں جا کے کیا ہو گیا. کئی دفعہ لائٹ اونچی ہے، تیز ہے، کبھی آپ کیسے دکھ رہے، لیکن بہرحال تو جو ایک ریئل ٹچ ہوتا ہے اس میں ٹچ کرنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور مسافہ کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت 576 جا کر پڑھیے گا کہ کتنا مطلب انسان کے لیے افیکٹو یہ عمل ہو جاتا ہے. تو کیا پھر عورت مرد سے بھی اور مرد عورت سے بھی؟ نہیں، ایون محرموں سے بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت کوشش کرنی چاہیے کہ عورت اور مرد، یعنی شوہر بیوی کا معاملہ ایک الگ ہے، اس کے علاوہ کسی رشتے میں बहुत ह्यूमन टच ना हो। आज खासतौर पे जो शैतान की चीज़ें आम हो गई और जो जज्बात उबलते पड़ते हैं, तो महरम रिश्तों में भी टचिंग से बचना चाहिए। ये एक आज के दौर का एक बहुत बड़ा डायलेमा है, लेकिन ये सच है। फिर इसके बाद आप देखिए कि कब, कहाँ, कैसे। जब कोई सफ़र से वापस आए तो मुलाकात के लिए मुआनिका भी किया जा सकता है। मुआनिका क्या है? उनुक से, आइन नून काफ, ये जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि गले मिलना, वो गले मिलते नहीं, वो गले पड़ते हैं, जिसको आप हग कहते हैं इंग्लिश में, कुछ लोग वो जिसको पंजाबी में कहते हैं जफी मारना, और वो जिसमें अगले का दम घोट देना। हाँ, तो इसका जो असल तरीका है ना, देखिए आप अपनी जगह पे खड़े रहें, कभी आपने कुछ अरब सिस्टर्स को मस्जिदों में मिलते जुलते देख, आप खड़े ना यूं गर्दन आगे करती हैं, गर्दन से गर्दन मिलने को मुआनिका कहते हैं, जफ्फी मारने को मुआनिका नहीं कहते। और ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है, कम अज़ कम मुझे तो ये बहुत बुरा लगता है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हया रखी है ना इंसान के, इवन औरत के साथ भी, औरत का जिस्म का टच करना और उसका फिगर, उसको मिलना और छूना, इट्स नॉट गुड। मुआनिका के हल्की सी गर्दन, और ये आम नहीं होना चाहिए। रोज़ मिलने वाले गले ना मिला करें, ऐसे लगता है हज से वापस आए हैं। रोज मिल रहे, अच्छा मैं जा रही हूँ, बस 6 घंटे की जुदाई बर्दाश्त कर लो, स्कूल से आ रही हैं, कॉलेज से आ रही हैं लड़कियाँ, गले मिल रही हैं, नहीं मिलना चाहिए। और एक चीज़ आप अपने ऊपर डाल लें, बाहर रोड पे कभी किसी को गले ना लगाएं। अब आप यहाँ आ रहे हैं तो ठीक है, कभी हो सकता है कोई पुरानी दोस्त मिल गई, 3 माह बाद बाहर दिखी, अब मॉल में उसको गले लगा रही, देखिए गोरों को नहीं पता आप क्यों गले लगा रहे हैं, वो कुछ और समझेंगे इससे, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। कभी किसी को बाहर, जब आपने 6 माह जो सब्र किए तो 6 माह 10 मिनट और सब्र कर लें, अंदर जाके मिल लीजिए। रोड पे हा हा हू हू करना, ये महज़ब तरीका नहीं होता। जब यहाँ से आप निकलते हैं ना, बस समझें कि ये सीढ़ियाँ आपकी डेडलाइन है, इससे बाद आपने आपस में बात नहीं करनी, अनलेस आप अपनी गाड़ी में ना बैठ जाएं। गौल के गौल निकलें, हो सकता है सामने दुकानें हों, कोई बच्चों को लेने आए और हमारी आवाज़ें, फिर हमारी खुशबुएं, फिर हमारी जूतियों की टुप 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 टुप, ये चीज़ दूसरों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों मना है जेवर पहन कर, बजने वाला जेवर पहन कर बैठ जाना? क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा, जिधर से औरत गुजरेगी उधर नजर जाएगी, तो क्या आवाज़ें नहीं आती? कभी आप एयरपोर्ट्स पे देखे झुंड के झुंड, कभी रेस्टोरेंट्स में देखी औरतें लड़कियां, यानी अजीब वो गरीब हालत हो जा चुकी है आज के दौर में। तो बहरहाल बहुत महज़ब तरीके से रहिए, कभी कभी कोई सफ़र से आता है तो बाहर उससे फिर मिला जा सकता है। और यह अदबुल मुफरत 970 की रिवायत है, और सहाबा के बारे में आता है कि जब मुलाकात करते, मुसाफा करते और सफ़र से आते तो फिर मुआनका करते थे। फिर इसी तरह मुलाकात के वक्त हराम कामों से बचना चाहिए, ये पांचवी चीज़ है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह के नबी ने हदीस में हमें मना किया, नोट कर लीजिए, कुछ लफ्ज़ आपके लिए नए होंगे। एक लफ्ज़ जिसको अरबी में कहते हैं अल इन्हिनाह, अलिफ लाम अलिफ नून हा नून अलिफ हमज़ा, क्या एक दूसरे के लिए झुकना। जैसे आपने देखा होगा कुछ मौज़ब ऐसे ऐसे सीने पे हाथ रख ना, यूँ झुकते हैं आप, जैपनीज चाइनीज़, वो आप भी खड़े वो भी खड़े ना, ऐसे झुक रहे हैं, आप भी झुक रहे हैं वो भी झुक रहे हैं, हराम है ये, गैर मुस्लिमों का फेल है। तिर्मिज़ी की रिवायत है 2728। फिर इसी तरह से दूसरी चीज़ बोसा देना, जब मिलें तो चूमना, किस कर लेना, ये चीज़ भी पसंदीदा नहीं है। फिर इसी तरह से गैर मुस्लिमों से सलाम की इब्तिदा करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि जिस पे हम पीछे सलाम में बात कर चुके हैं, जो जिस चीज़ को पसंद करता है उसको वही कहना चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मुलाकात का कोई मकसद होना चाहिए, आप किसी मकसद के साथ किसी को मिलें, चाहे ठीक है आप की मोहब्बत है, अब एक तो है मिलना जुलना, वो आगे इंशाल्लाह हम रिश्तेदारियों के मामलात कल देखेंगे, कल का पूरा टॉपिक ही से रिश्तेदारी है कि कैसे फैमिली सेटअप को क्या कायम रखे और हमारी क्या उसकी लिमिट्स हैं। लेकिन बहरहाल यह है कि जब दूसरों से मुलाकात करें तो उनको खुशी होनी चाहिए। फिर इसी तरह मुलाकात की ख़ास किस्म इयादत करना, वो क्या होती है? जब कोई बीमार है तो आपको खबर हो गई कि वो बीमार है, तो फिर आप उसकी इयादत को जा सकते हैं, बहुत अजर की बात है। बीमार शख्स बहुत ही कटावा महसूस करता है खुद को, वक्त भी बहुत होता है, बीमारी की वजह से बाज़ दफ़ा दिल पे भी बोझ आता है और फरागत बहुत सारी होती है, तो उस फरागत की वजह से इंसान का दिल चाहता है कि लोग उसके पास आए, बैठें, बातें करें, तो बीमारों को देखना चाहिए, बहुत ही अजर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में भी महरूम नहीं किया। कि बस आप अपनी मर्जी करें। देखिए हमारे यहाँ एक अमूमी बात क्या है, वो हमारे घर आए थे तो फिर अब हमें भी जाना होगा, उन्होंने दिया था तो हमें भी देना पड़ेगा, दिस एंड दैट। आप और मैं ये सब कुछ दीन समझ के करें, दीन में पढ़े ना, इस्लाम में पढ़े, इस्लाम ए टू जी। कितना अच्छा होता अगर इस वक्त में भी हम कुछ और ही बातें कर रहे होते, नमाज की कुछ नफली नमाजों की किस्में देख लेते और रोज़े के कुछ और फाए फवाद देखते। लेकिन नहीं, जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत है, दूसरे को बीमारी के वक्त पे वक्त देना, उसकी टेक केयर करना या किसी से मुलाकात करना, ये भी सरासर इबादत है। तो ये आदत करने के लिए करना क्या चाहिए, इसको चंद नोट चीज़ों में नोट कीजिए। इसमें भी हमारे यहाँ बड़ी कमी है। हमने किसी को देखने जाना, सबसे पहले कहते फूल लाओ, आज नहीं जा रहे, फूल नहीं मिले इसलिए, फ्रूट लेकर आओ, मिठाई लेकर आओ, केक लेकर आओ। अब मरीज़ बेचारा केक खा नहीं सकता, आप इतना बड़ा केक का डब्बा उठाकर किसी की तीमारदारी को चले, और शुगर पेशेंट को देखने गए और आमों की पेटी ले गए, तो आप उसके जख्मों में नमक तो नहीं, आम तो मल के ही आएंगे ना। थोड़ी सी समझ करनी चाहिए। बास लोग आप देखिए कि वो काम कर रहे होते हैं जो शुरू से दूसरों को करता देखते हैं। तो पहली बात है कि ये आदत करने जाने के लिए कुछ खाना पीना या तोहफा ले जाना भी दुरुस्त नहीं। ख़ास तौर पर ये जो पीछे बात की है ना आपके साथ अभी मुलाकात, तो इसमें अगर आप एक दूसरे के घरों में जाने में, तो इसको भी थोड़ा सा एक दो जुमले उसी में डाल दीजिए या इसमें डाल दीजिए। और वो क्या है कि आप किसी के घर गए, आप क्या लेकर जाएंगे। ये जो एक अजीब रस्म बन गई है ना, रस्म इसलिए कहती हूँ कि वो चीज़, देखिए अभी आगे हम तोहफे की भी बात करेंगे तो वहाँ भी आ जाएगा, लेकिन मुलाकात करने के लिए जाना और उस वक़्त हाथ में कुछ ज़रूर लेकर जाना, ये रस्म है, पक्की बात है, ये रस्म है। जो चीज़ अगला आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाए, ये रस्म है। तोहफा क्या है, अनएक्सपेक्टेड, अचानक आपने निकाल कर कुछ दे दिया, ये मेरा दिल कर रहा था आपको दूं, ये मैंने आपके लिए लिया था, मुझे याद आई थी, चले आप कहीं बाहर गए, पसंद की कोई चीज़ लेके आए, रख दी। ये भी ज़रूरी नहीं कि अब जब गए वहाँ से क्या लेकर आएंगे, मरी गए हैं तो अब सबके लिए गर्म चादरें लेकर आएंगे। अब वो गरीब बेचारे मरी जाकर सारा गम ही ये पड़ता रहता है कि हाय क्या लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जी हज पे गए हैं, हर तवाफ़ में सोच रहे हैं किसको क्या देना है, और कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाही की बजाय वो लिल खानदान और वालदैन के लिए शुरू हो रहा होता है। ऐसी चीज़ों से बचें। आप मेहमान बीमार को देखने गए हैं, आपके पास कोई दुआओं के कार्ड्स, कोई दुआओं की बुक्स, कोई ऐसी चीज़ें जिसको पढ़ने से उसको फ़ायदा हो, पढ़ नहीं सक रहा बेचारा किसी वजह से तो सुन सके, या उसको किसी किस्म की उसमें यानी सहूलत का सामान हो वो ले जाइए, लेकिन इसको रसम ना बनाए, ये भी इसराफ होता है। बाज़ लोग बीमारों को देखने जाते हैं, वहाँ जाकर देखे 10 फ्लावर बके पहले ही रखे हुए, आप एक और ले गए, अब इतने फूलों को वो क्या करेगा बेचारा। तो इससे थोड़ा सा इवॉइड करने की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह से बेहतर यह कि इजाज़त लेकर जाए, मुनासिब वक्त पे जाए, ऐसा वक्त जिस पे वो खुशी महसूस करे। फिर अगली बार ज़्यादा देर ना बैठे और जाकर उसका हाल ऐसे ना पूछे कि वो बेहाल हो जाए। बहुत सारे क्या हाल है, फिर पूरी बीमारी उनसे ही सुनेंगे, फिर क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। ये चीज़ें बाज़ दफ़ा बीमार को दुख देती हैं। और जाकर उसकी जिस्मानी हैयत या रंग ढंग पे कहना, आपका तो रंग पीला हो गया, आंखें तो अंदर ही चली गई, बस अब आप तो जाने ही वाले हैं, ये अंदाज नहीं करना चाहिए। अगले बंदे को खुशी दें, करें क्या, उसको ज़िंदगी की उम्मीद दिलाएं, पुरउम्मीद बातें करें, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं ये जुमले बोलें, उनको मसरूफ़ कीजिए, कोई ऐसा काम दीजिए कि जिसके बाद वो उस बीमारी को नेमत समझें। देना है तो उनको कोई सीडी प्लेयर दे दें सीडीज के साथ के बैठिए और सुनिए, कुछ करना है तो उनका नाम किसी ग्रुप में डाल दें, कोई व्हाट्सएप में से उनको डेली कुछ भेज दें, कोई फ़ोन में चला दें, फ़ोन नहीं है तो आप कहीं किसी सूरत में अपने पास USB में कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले जाएं कमरों में। अमूमन आप देखिए कि लैपटॉप्स कंप्यूटर्स होते हैं, यानी उनको बताइए कि फ़रागत नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरागत जो है, दो नेमतें ऐसी हैं, नेमतानी, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिसके बारे में लोग गबन का शिकार है, उनमें से एक सेहत और एक फरागत है। और आप देखिए कि जब आप आदत करने जाते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी, बीमारी नहीं, बीमारी है, सेहत चली गई, कदर आ जाएगी ना, और फरागत आ गई, कोई बात नहीं, बीमार के पास बहुत सारा वक्त होता है। तो फिर याद रखिए कि आदत इसलिए भी करनी है कि ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। सही मुस्लिम की रिवायत है 5650, 6 हकूक हैं जो मुसलमान के मुसलमान पर, उसमें से एक ही है। फिर आप देखिए कि आदत से दूसरे के दिल की तसल्ली होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको मौका मिल जाता है एक बात का, और वो क्या, शुक्र का, कि अल्लाह आपने मुझे बचा लिया इस तकलीफ से। जब बीमार के पास जाएं तो वो दुआ ज़रूर पढ़िए जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ में देखे तो ये दुआ कर ले, तो अल्लाह ताला उसको उस तकलीफ़ से बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाका बिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। बहुत सारी किताबों में ये दुआ मौजूद है, इसके स्टिकर्स कार्ड्स मौजूद हैं, ये दुआ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह आपको उस बीमारी से बचा लेगा। फिर सही मुस्लिम की रिवायत है 6556, अबू हुरैरा रावी हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा इब्ने आदम मैं बीमार हुआ तूने मेरी खबर ही ना ली, वो कहेगा मेरे रब मैं तेरी खबर कैसे लेता, तू तो सारे जहान का मालिक है। उस पर अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फलां बंदा बीमार हुआ तो तूने उसकी खबर ना ली, अगर तू इसकी खबर लेता तो मुझे उसके नज़दीक पाता। सुबहान अल्लाह, कितना अल्लाह ताला के नबी का ये अंदाज़ है रग़बत दिलाने का। देखिए हम कहते हैं कोई अपना बीमार हो तो हम जाएं, अल्लाह ना करे अपना कोई बीमार हो, अदर लेने ना हॉस्पिटल्स में से चले जाइए, कभी किसी को देख लें नेबर में कोई बीमार है, और 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, और कोई किसी एक ही बीमार को देखना लाजमी भी नहीं होता, बीमार तो सारे शहर में कितने ही होंगे, ताल्लुकात को बढ़ाने का एक तरीका भी हो जाता है। फिर इसी तरह एक बड़ी प्यारी रिवायत है सही मुस्लिम में ही 6551, कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की इयादत सुबह को करे तो शाम तक, और अगर शाम को करे तो सुबह तक, 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं, और जन्नत में इसके लिए बाग बना दिया जाता है। अबू दाऊद की रिवायत है 3098, और इसी तरह से फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं और जन्नत की खुशखबरी देते हैं इयादत करने वालों को, मुस्लिम 6551। तो क्या करना है, आदाब सीखने और जाना है, करें क्या, नंबर एक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आदत कीजिए, वही बात है मुखलसीन लहुद्दीन, अल्लाह का हुक्म समझ कर कीजिए, सवाब की उम्मीद पर कीजिए, खलुसे दिल के साथ मुसलमान भाई का हक अदा करने की नीयत से कीजिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए कीजिए। फिर इसी तरह जब किसी का मर्ज़ तवील हो जाए तो ख़ास तौर पर इयादत करने में देर नहीं लगानी चाहिए, जल्दी कीजिए, ये नहीं कि आप मसरूफ़ रहें अपने कामों में और अल्लाह ताला उस मरीज़ को या तो शिफा दे दे या फिर वो दुनिया से चला जाए और आप कहें कि मैं तो नियत ही करती रह गई और मैं ये काम नहीं कर सकी। फिर इसी तरह से छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, यानी उम्र में कोई बहुत छोटा या गरीब क्यों ना हो, उसकी भी आदत कीजिए। बुखारी की रिवायत है 7377, आप अपनी बेटी के पैगाम पर उसके बच्चे को देखने के लिए आए, यानी नवासे को देखने के लिए भी आए, और इमाम बुखारी ने आपको कहा कि इस पर क्या बाब बंद है, बाबु इयादत सिबियान, बच्चों की भी आदत की जा सकती है, कितना फहम था उनका इस बात में। फिर इसी तरह मर्द, क्या कोई मर्द बीमार है तो औरतें, या औरत बीमार है तो मर्द इयादत कर सकते हैं, शरई जाब्तों और हदूद में रहते हुए ऐसा किया जा सकता है। बुखारी 5654 और मुस्लिम 1376, और इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है, बाब इयादतुन निसाउर रिजाल, क्या औरतें मर्दों की इयादत या फिर उसके ऑपोजिट कर सकते हैं। उम्मे दर्दा अहले मजलिस में से एक अंसारी की इयादत के लिए आईं, इस तरह नबी सल्लम एक मस्कीन औरत की आदत के लिए गए जब वो बीमार हुई, ये सारे दलाइल मौजूद हैं। तो लिहाजा फितने का डर ना हो, शरई हदूद हो, तकवा की हिर्स हो, गस्से बसर पे कारबंद रहें, तो फिर ये काम किया जा सकता है। फिर इसी तरह मुशरिक की आदत की जा सकती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारे कोलीग्स और साथी, बिल्कुल की जा सकती है, बल्कि इस उम्मीद पर कीजिए कि आज बेस्ट मौका है उसको दावा का, अल्लाह के साथ करीब होने का, मौत का डर दिलाइए, शायद वो मुसलमान हो जाए। और बेहतर हो जाए। बुखारी की रिवायत है 5657। फिर इसी तरह जब मरीज़ के हालात बहुत ख़राब हों, मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर जाए, हत्ता के बेहोश हो जाए, तब भी ये आदत करनी चाहिए। बुखारी 5651। फिर इसी तरह बुखारी की एक और रिवायत नोट करें 5664। पैदल जाकर ये आदत करने का अजर और भी ज़्यादा है सवार के मुकाबले में। दूर की मुसाफत है तो सवारी यूज़ की जा सकती है। फिर इसी तरह से एक और चीज़ क्या है कि तवील बीमारियां होती हैं। अब आप कहते हैं कोई नया नया बीमार हुआ है तो उसकी भी आदत चले, जैसे हमारे घरों में मारूफ है, अरे फलां बीमार है चलते हैं, फलां की अम्मा बीमार हो गई। किसी की तवील बीमारी में से शुगर है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी कर सकते हैं, आपने तो सवाब लेना है। अबू दाऊद 3100 इसकी दलील में मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर इसी तरह से जब जाएं तो अगर घर वालों से पहले कोऑर्डिनेशन करके कोई ऐसी चीज़ जो मरीज़ के इस्तेमाल की हो या घर वाले मसरूफ़ हैं उनके खाने के लिए ले जाएं, ये बहुत पसंदीदा अमल है। देखिए ये खाने हैं जो आप और मैं एक दूसरे को खिलाते ही रहते हैं, वो भी अजर होगा, लेकिन जिस दिन आपके अपने घर में ना पके उस दिन कोई भेजे तो उसकी ज़्यादा कदर और खुशी होती है और इससे घर वालों को सुकून मिलता है। बुखारी 6266। मरीज़ के सर की तरफ बैठना चाहिए, ये सुन्नत है रसूल की। बुखारी 1356। इससे मरीज़ राहत महसूस करता है और मरीज़ के सर पर हाथ फेरना और दुआ करना और हाथ को पकड़ना भी अगले को अच्छा लग महसूस कराता है। फिर इस तरह मरीज़ से उसका हाल पूछना भी नबी सल्लम की सुन्नत है, तिरमिज़ी 383। और मरीज़ के साथ भलाई के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए बल्कि अल्लाह की हमदो सना करें, और जब आप उसको खुशखबरी देंगे तो तकलीफ़ बर्दाश्त करनी आसान हो जाएगी और वो अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाएगा। अबू दाऊद 3092। इसी तरह आप मरज़ में अल्लाह की हिकमत का तذکرہ करते थे, बुखारी 5641। यदि मरीज़ को ये बताया करें कि इसमें भी हिकमत है कि अल्लाह ने आपको बीमार किया। फिर इसी तरह से जब आप मरीज़ के पास से उठें तो उसको अच्छा लगे। एक काम और किया जा सकता है और वो क्या कि अगर इयादत करने वाला खुद सालेह है, नेक शख्स है, वुज़ू करे और बचने वाला पानी मरीज़ पर छिड़क दे, ये नबी सल्लम का तरीका है। बुखारी 5651। इब्ने हजर जो माशाल्लाह बहुत बड़े मुफसिर थे और शरह लिखते थे बेसिकली, हाफिज़ इब्ने हजर अल असक़लानी, वो कहते हैं कि ये बात छुपी भी नहीं है कि जब इयादत करने वाला ऐसा हो तो इससे मरीज़ को बरकत मिलती है। फतहुल बारी जिल्द 10 पेज 138। फिर इसी तरह मरीज़ को तकदीर पर सब्र और अल्लाह के हुक्म पर राज़ी रहने की तलकीन करनी चाहिए, ये जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से है। आले इमरान 146 और तिरमिज़ी 2396। बस वह मरीज़ तकदीर से नाराज़ होता है तो उसको तकदीर को बुरा भला कहने से रोकना चाहिए, सही मुस्लिम 6570। अब आप देखिए सिर्फ इयादत करते हुए आप कितनी नेकियां ले गए। फिर इसी तरह मरीज़ के लिए दुआ और शरई झाड़ फूंक का अहतमाम भी किया जा सकता है। अल्लाह के नबी के ये अफ़ाल में से एक फ़ेल था, आपने फरमाया यानी जब नबी सल्लम बीमार हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अल्लाह के नबी पर एक दम किया था। मैं बोलती हूँ आप भी मेरे साथ दोहरा लीजिए और ये आपको दम ज़रिया इलाज बुक में भी इंशाल्लाह मिलेगा। बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्री कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यश्फीका बिस्मिल्लाही अरकीका। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं 5700। अल्लाह के नाम से हर उस चीज़ के शर से जो आपको तकलीफ़ देने वाली हो और हर नफ्स या हसद करने वाली आँख के शर से मैं आपको दम करता हूँ। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ। ठीक है, तो ये दुआ भी आप साथ लिख कर ले जाइए, वहाँ बैठ कर सुना दीजिए। फिर इसी तरह मरीज़ पर मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ कर फूकना भी मुस्तहब है, बुखारी 5735। फिर इसी तरह मरीज़ को मौत की तमन्ना से रोकना चाहिए। अल्लाह के नबी हज़रत अब्बास की आदत के लिए आए और जबकि वो बीमार थे, तो हज़रत अब्बास ने कहा कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, तो आपने फरमाया कि चचा मौत की तमन्ना न करो, फिर अगर नेक हैं आप और आपको मोहलत मिल जाए तो नेकियों पर नेकियों का इजाफा होगा जो आपके हक़ में बेहतर होगी, और अगर आप गुनाहगार हैं तो उम्र मिली, तौबा करेंगे, भलाई होगी तो मौत की तमन्ना ना करें। मुस्तदरक हाकिम जिल्द 1 339 नंबर है ये, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर इसी तरह मरीज़ को शिकवा करने से बचाना चाहिए, क्योंकि शिकवे अल्लाह को पसंद नहीं। इन्ना माशकु बसी व हुज़नी इलल्लाह। फिर इसी तरह मरीज़ को अल्लाह से हुस्ने ज़न रखने की नसीहत करे, ताकि अल्लाह से अच्छे ज़न के साथ मिले, ताकि अल्लाह ताला भी उसके साथ अच्छा मामला करे। फिर इसी तरह से मरीज़ के चेहरे मोहरे से दिखने लग जाता है कि अब वो सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, तो वहाँ से उठ जाइए, इस वक्त ज़्यादा ना करें। ताऊस कहते हैं कि सबसे अफजल इयादत सबसे कम देर की आदत होती है। क्या पता चला कि थोड़ी देर बैठिए, ज़्यादा देर ना बैठें। हाँ, मरीज़ कहें कि आप बैठिए बातचीत करें तो फिर कोई हर्ज नहीं है, और ख़ास तौर पे फिर घर वालों को भी थोड़ा सा मौका दें सब्र की, खिदमत की और हुस्ने सलूक की नसीहत करें। इमाम नववी, जिन्होंने सही मुस्लिम की शरह लिखी, वो कहते हैं कि ये अदब वाजिब है, इसका एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि घर वाले खिदमत को बोझ समझने लगते हैं, और ख़ास तौर पे जबकि बीमारी तूल पकड़ जाए तो घर वालों पर खिदमत मुशक्क़त होती है। तो इयादत के असूलों में ये भी है कि घर वालों को भी थोड़ा सा तसल्ली दीजिए। एक और काम कर सकते हैं आप बीमार के पास, वसीयत की तलकीन करें। ज़िंदगी की निस्बत मौत के करीब होता है इंसान बीमारी में, हालांकि मौत बीमारी की वजह से नहीं आती, तो लिहाजा वसीयत करके इंसान अपने जहन में जो बातें सोची होती हैं उसको दूसरों तक पहुंचा दे, ताकि अगर मौत आ भी गई तो उसके दिल की बात दिल में ना रह जाए। फिर इसी तरह से हज़रत साद बिन माज जब गज़वे खंदक में ज़ख्मी हुए थे, तो अल्लाह के नबी ने इनका खैमा ही मस्जिद में लगवा लिया, ताकि बार बार आपकी इयादत कर सके। बुखारी की रिवायत है 4122। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बीमारियों से बचाए, और जो बीमार हैं उनके साथ हमें अच्छे मामले करने की तौफीक अता फरमाए। आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए करेंगे ना, कल आपके लिए भी आसान हो जाएगा। फिर इसी तरह हम जाते हैं तो बंदे मरीज़ को सारे ही टोटके ये खा लें, लस्सी में डाल के, गोभी में, ये ना खाएं वो ना खाएं, बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आजकल आप देखिए दवाएं इस किस्म की आ गई हैं कि किसी चीज़ के साथ कुछ लगता है, कुछ के साथ नहीं लगता। कोशिश करके पहले से ये बातें आम कर देनी चाहिए कि आर्टिफिशियल दवाइयाँ ना ही खानी पड़ें, और यकीन करें कि अगर आप अपने लिए ये बातें सुन रहे हैं ना, तो दुआ करें कि अल्लाह हमें बीमारी ना करे, और अगर बीमार करे तो कड़वी दवाइयाँ और इस तरह के इलाज जिसके बाद इंसान मोहताज हो जाता है। मैंने देखा है बाज़ लोग ट्रैंक्लाइजर्स लेते हैं, बाज़ लोग रिलैक्सेंट्स लेते हैं, बाज़ लोगों को टेंशन और स्ट्रेस की गोलियाँ। कभी ज़िंदगी में इसको हाथ ना लगाइए, ये तो अपने आप को खुद एक ऐसी आग में डालना है कि जिसमें से फिर इंसान जीते जी तो नहीं निकल सकता। दवा खा लें तो आप ठीक हैं, ना खाएं तो आप दीवाने और मजनू बन जाते हैं, आप अपने आप को काटने खा जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को ऐसी तकलीफ़ों और बीमारियों से दूर रखे जिसमें उसने दूसरों को डाला है। अब ये चीज़ें तो हो गई, एक और काम जो हम सबको बड़ा प्यारा लगता है वो क्या है, मेहमान बनना। नहीं, मेहमान नवाजी नहीं अच्छी लगती, मेहमान बनना अच्छा लगता है। किसको मेहमान बनना अच्छा लगता है और किसको मेज़बान? मेहमान बनना किसको, वो हाथ खड़े करें। मेज़बान बनना किसको अच्छा लगता है? शर्त है एक, ससुराली मेहमान ना हो, खाना ज़्यादा ना बनाना पड़े। और कितने अपने हस्बैंड से सिर्फ इसलिए नाराज़ रहते हैं कि रोज़ किसी को बुला लेते हैं, साथ ही ले आते हैं। हाँ, आप देखिए कि दीन कितना खूबसूरत है। आप देखिए, आप मेहमान बने या मेज़बान, दोनों में अजर है। अब यहाँ हम मेहमान नवाजी के आदाब पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमें अमूमन इसका ज़्यादा मौका मिलता है। हमारे घरों में मेहमान आए रहते हैं, और बाज़ लोग तो अल्लाह रहम करे, मेहमानों का आना उनके सुख चैन का जाना बन जाता है। क्लासों से छुट्टियाँ, मेहमान आए हैं। मैं कहती हूँ आपके घर मुसलमान मेहमान ही आए हैं ना, आपके कोई दुश्मन मेहमान तो नहीं, दोस्त है ना, आप उनको फारिग कराएं, चाय पानी नाश्ते दे, उन्हें के फील योर हेल्प योर सेल्फ, आई एम गोइंग, आई विल कम बैक। तो मेहमान नवाजी का पहला अदब लिख लें, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी चाहिए। छुट्टी के लफ्ज़ के साथ ही मेरे अंदर इतना नेगेटिव रिएक्शन आता है कि मैं बता नहीं सकती कि वो मेहमान कैसे रहमत हो सकता है जिसकी वजह से हम अपनी नमाज छोड़ दें। तो नमाज नहीं छोड़ सकते तो हम क्लास कैसे छोड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। और यकीन करें, सिर्फ मनवाने वाली बात है। आप जॉब करें, मेहमान आ जाएं, मेहमान रहने में ले आए, 3 माह के लिए आ गए, 1 माह के लिए पाकिस्तान से इंडिया से कोई आ गया, तो क्या आप छुट्टियां ले लेते हैं? वो तो खुद कहेगा बेटा तुम जाओ, हम देख लेंगे। बल्कि और भी फ़ायदा होता है, घर में बच्चे हैं तो उनको देख लेते हैं। अगर आपको खुद यकीन है ना, आपको अगर खुद यकीन है कि आप कर सकते हैं, अपना अपनी बात को मनवा सकते हैं, तो आप कभी अपने फ़राइज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मेहमान नवाजी को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस्लाम का एक रिचुअल है, सही मुस्लिम 173 अबू हुरैरा से रिवायत है कि जिस शख्स का ईमान अल्लाह ताला रोज़े क़यामत पर हो, चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे, यानी मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। अब कैसे मेज़बान बने, इसके दो हिस्से कर लेते हैं। दावत से कबल के आदाब। पहली बात है कि जब किसी की मेज़बानी का मौका मिले तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी खिदमत करें और अल्लाह से ही अजर की तवक्को रखें। दूसरी बात, मुत्तकी और परहेज़गार को मेहमान बनाइए। रिवायत आपके सामने है, बहुत सारे हवाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन आदमी की सोहबत इख्तियार करो और तुम्हारा खाना भी कोई मुत्तकी ही खाए। मुस्नद अहमद अबू दाऊद 4832। इसी तरह मेहमान नवाजी के लिए सिर्फ मालदार लोगों को मखसूस नहीं करना चाहिए, फ़ुकरा को भी बुलाना चाहिए। बुखारी 5177। फिर ऐसे शख्स को दावत नहीं देनी चाहिए जिसके शरीक होना मुश्किल हो, क्योंकि इस दावत से उसको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ना आ सकने की वजह से वो अजियत में होगा और मोमिन को अजियत देना हराम है। और इसी तरह से अगर वो ना आया तो बुलाने वाले को भी बुरा लगेगा। फिर अगला मैनर नोट कीजिएगा कि फ़ख्र जतलाने के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा और मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करने के लिए मेहमान नवाजी करनी चाहिए। चलिए आ गए मेहमान दावत में, अब क्या करें? नंबर एक, फिर स्माइली फेस। हर अदब में आज तो आप स्माइली बन ही जाएंगे। यहाँ तो आप रहते हैं, घर जाकर नागवार हालात में स्माइल। तो उम्दा तरीके से मुस्कुराते चेहरे के साथ मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। कुशादा पेशानी, खिलता हुआ चेहरा और आंखों में चमक लेकर इस्तकबाल कीजिए, आने वाला खिल जाता है। मैं तो अक्सर एक जुमला बोलती हूँ, सारे सफ़र की थकन दूर हो गई आपको देखकर। और आप देखिए कि हम जहाँ भी जाते हैं दिल में कुछ सोच लेकर जाते हैं ना। हम यहाँ से अगर पाकिस्तान भी जाएं या इंडिया आप जाएं, तो आप देखिए कि 20 घंटे लग ही जाते हैं ना कमोबेश इधर उधर घूमें। क्यों जाते हैं? अपनों को मिलने जाते हैं ना। क्या नहीं मिलता इधर? अपने नहीं मिलते, प्यारे नहीं मिलते ना। तो जब कोई आपके पास आए या आप जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। और नबी सल्लम की सुन्नत थी कि वफूद का वालेहाना इस्तकबाल करते थे। बुखारी की रिवायत है 6176। खड़े होकर इस्तकबाल से खुशी से मिले, ये दीनदारी है। याद रखिए कि बाज़ लोग दीनदार के नाम के साथ सोच लेते हैं कि उसको दुनियादारी का कोई अदब, कोई मैनर कुछ आता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। नबी सल्लम को जूँ ही खबर मिलती थी कि कोई मेहमान आ रहा है तो आप ख़ुद उसके पास जाते और उसकी उसको वेलकम करते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मेहमान को इज्जत के लिए मुनासिब जगह पर बिठाइए। ऐसी जगह जहां बदबू आ रही है, खुली जगह है, लोग गुजर रहे हैं, वहां ना बैठे। इसमें भी बाज़ लोग अक्सर के 99% तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन 1% अगर आप खुद ना हो इसलिए उसको सोच लें। जिक्र कर रही हूँ, घर का सबसे बेहतरीन हिस्सा मेहमान के लिए खोलना चाहिए। बस लोग सिर्फ इसलिए कि बाद में सफाई करनी पड़ेगी, इनके साथ बच्चे हैं, इसके साथ ये मामला ना हो, वो मेहमान को ऐसी जगह पे बिठाते हैं जो मुनासिब नहीं होती। बेहतरीन हिस्सा घर का मेहमान के लिए होना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि खाने पीने का एहतमाम और मशरूबात आते ही पेश करना चाहिए। सूरह ज़ारिया 24:27 में हज़रत इब्राहिम का किस्सा याद कर लीजिए। पूछा ही नहीं कि क्या खाएंगे क्या नहीं पियेंगे, बल्कि पेश कर देना चाहिए। कोई ना खाए ना पिए वापस ले जाए, पूछना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। एक आध चीज़ है रख लीजिए, और 10 किस्म के जूस भी इकट्ठे करके नहीं ले जाने चाहिए कि अगला कह दे कि मैंने सारा आज ही नहीं पीना, मैं कुछ कल भी पी सकता हूँ, खा सकता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह से खुद को पीछे रखिए, मेहमान को आगे कीजिए। खाना हाजिर करें और मेहमान के करीब रखें खाना, सूरज़ आरिया 27। अगर खाना कहीं अलग जगह पे लगा दिए तो मेहमान को उधर बुला के ले जाइए। फिर इसी तरह मेज़बान को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि मेहमान की खिदमत करे, लेकिन तकल्लुफात में नहीं बढ़ना चाहिए। जो बुरी चीज़ है ना, वो तकल्लुफ है, क्योंकि तकल्लुफ में है तकलीफ़ ज़्यादा, ज़ारिया 26 है। फिर इसी तरह तकल्लुफ बाज़ दफ़ा मेहमानों के इस्तकबाल में रुकावट बन जाता है। बाज़ लोग मेहमान को बिठा कर ख़ुद किचन में घुस जाते हैं, समोसे तले, पकोड़े तले, चिकन तला, फिश तली, वो समझते शायद आने वाला किसी होटल में आया है और उसको अब हर आइटम चखानी लाजमी है, टेस्टर है वो। नहीं, मुनासिब तरीका नहीं है। अच्छे तरीके से रखिए, अगले को खुशी दे, ये नहीं कि घर वाले ही शर्मिंदा, मेहमान शर्मिंदा होता रहे कि अब मैंने आकर आपको तकलीफ़ दी है। फिर इसी तरह मुलाजमों से नहीं, खुद खिदमत कीजिए अपने मेहमानों की, ये भी इस्लामिक अदब है। और हज़रत इब्राहिम ने तो ख़ुद ही बछड़ा भून के रख दिया था, आयत 26 27 ज़ारियात। और इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा अपनी किताब में, बाब व इकराम व दैफी व खिदमत हु इयाहु बि नफ्सिही, मेहमान की इज्जत करना और ख़ुद उसकी खिदमत करना अपनी जान से। ये टॉपिक का नाम है इमाम बुखारी ने, जहाँ भी ये बात की है, खुद ज़्यादा अच्छी की जा सकती है। फिर इसी तरह से देखिए, मेहमान को इसका हक देना है। हक कितना है? 1 दिन और 1 रात, यानी 24 आवर्स तक जो भी आप देंगे ये मेहमान का हक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रात ज़ियाफ़त है। अब 3 दिन के बाद क्या करें? पाकिस्तान वालों से क्या आप जाइए और इंडिया वालों से क्या आप जाइए या फिर होटल ले लीजिए? नहीं, फरमाया 3 दिन के बाद हर चीज़ जो आप मेहमान पे लगाते हैं वो सदका है, घर बैठे सदके का अजर, और वो सदका जिसमें से आधा आप खुद ही खा दें। कई घर वाले क्यों खुश होते हैं जी शाहीन, क्या कहते हैं हमारे कल्चर में, बच्चे क्यों खुश होते हैं मेहमानों के आने पे? खाने मिलेंगे। और हस्बैंड क्यों खुश होते हैं? वो कहते हैं ना कि खाना, मेहमान आए और खाना लगा तो सब हाथ धो रहे, तो मियाँ साहब भी हाथ धोने लगे। तो बेगम पीछे से बोली, आप क्यों हाथ धो रहे हैं? कहो मैं हाथ धो के बच्चे को उठाऊंगा। तो बाज़ मर्दों को उस वक़्त भी इजाज़त नहीं होती है, लेकिन यह है कि घर वालों को भी मिलता है। लेकिन याद रखिए, मेहमान घर में आ जाए आपका एक एक लुकमा सदका बन जाता है। क्यों? हज़रत इब्राहिम खाते ही नहीं थे बगैर मेहमान के, कि मेरा खाना सदका बन जाए। और ये रिवायत बुखारी की 6134, मुस्लिम 2729 है। फिर इसी तरह मेहमान पर ठहरने की मुद्दत के सिलसिले में एहसान करना चाहिए, और सोने, खाने, पीने, नहाने धोने, सफाई का एहतमाम करने में हुस्ने मामला करना चाहिए। फिर मेज़बान को खाना जल्द पेश करना चाहिए, ये मेहमान की इज्जत है, ये नहीं कि उसको बिठा दें और उन्हें कह के बैठे अभी तो खाना पका ही नहीं है। फिर इसी तरह जब तक मेहमान फारिग ना हो जाए मेज़बान को दस्तरखान से नहीं उठना चाहिए, ये बैड मैनर है। आप बैठे रहिए, वो खाते रहे और साथ बैठे रहे। फिर इसी तरह बीच बीच में थोड़ा बार बार कहते रहना चाहिए, अच्छा खाना तो बहुत थोड़ा और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा खाना बेमुरव्वती है और ज़्यादा खाना रखना तसन्नो है। दोनों ही बातें इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। मुनासिब रखिए, देखिए सबको पता है मुनासिब क्या होता है। अगर आपने एक चावल बना दिए तो एक सालन बना दीजिए, साथ एक सैलड बना लें। ठीक है, आपको लगता है कोई चावल नहीं खाता तो 2 रोटियां रख दें, दैट्स इट। और अगर आप 10 खाने पका लें, अच्छा लोग आए 10 और आप गिन के 8 को लोगों का खाना रखें कि 2 तो नहीं ही खाएंगे, गलत है। ये इतने घुटे हुए दिल की बात है। मैं एक ऐसे आलिम को जानती हूँ कि किसी रिश्ते के सिलसिले में एक दूसरे को मिले और सिर्फ इस बात पे उनका दिल बोझल था कि यहाँ मैं अपनी बेटी नहीं भेजूँगा, कि आज हम रिश्ते नाते के नाते से गए और इतना यानी हाथ खींचा हुआ था उनका या दिल खिंचा था, तो कल ये क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे मौक़ों पे तो लोग वैसे ही फ़राख दिली से लौटाते, तो दिल तंग नहीं होना चाहिए। तो मैनेज कर लीजिए, खाना बच गया आप उसको फ़ौरन उसको रुक के किसी और को भी दे सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो मारूफ है कि मेहमान होकर जाए तो 1 हफ़्ता फ्रिज का क्या हाल होता है। और मैंने किसी से कहा फ्रिज में नहीं है तो फ्रीज़र में रख लेगा, फ्रीज़र का भी यही हाल है। और अल्लाह माफ़ करे हम लोगों को, यानी पहले तो मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ जो मैंने लोगों में देखा है, जिस जगह भी हम तो हर वक्त ही मेहमान होते हैं, अल्लाह हम पे रहम करे, किस किस का हक है हमारे ऊपर ये तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं, खाना नहीं ख़त्म होता, जिस जगह भी जा कर रहे हैं, पता नहीं ये हमारी मोहब्बत का क्या इज़हार है, कैसे लोग पूछ लेते हैं बता लेते हैं, यानी ख़ास तौर पे मुझे याद आ रहा है रमज़ान में हम पिछले सालों में भी जहाँ थे तो हर दिन मग़रिब से पहले इतने खाने होते थे, हालांकि स्केजुअल थे, सबको उन्होंने बारियां दी हुई थी कि अगर आपको बहुत शौक है तो आप आज ले आइए, आप कल ले आए, जो भी, इसके बावजूद भी इतने खाने थे, पूरी गली पूरा मोहल्ला और इर्द गिर्द वाले खाते थे, घर वाले कोई खाए ना खाए, बरकत कह लीजिए या क्या है, लेकिन खाने को बांट लें, बहुत ज़्यादा आप उस खाने को इस तरीके से ना रखिए कि अब लालच करते फिरें, रखें आप थोड़ा सा ले लीजिए, आपको पहले ही समझ आ गया खाना ज़्यादा है तो बचने के बाद जो देना है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, मैं उनको कहती थी आप थोड़ा सा निकाल लें बाकी सबको मोहल्ले में बांट दें, सारे बड़े खुश होते थे कि चलो भाई अच्छा हो गया, तो देखिए ये तो सदका ही है जितना भी कोई करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने और ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है, फिर इसी तरह मेहमान को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि बेचारा रो पड़े कुछ की खुशी पूरी नहीं होती, बस मेरी खुशी के लिए कुछ लोग डालते जाते हैं, पहले डालने पे आप खुश हैं चलो डाल दिया, दूसरे पे आप ज़रा सा खींचते, तीसरे पे तो गुस्सा आने लगता है, नहीं 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 ये भाई आपने में क्या समझा, तो एक मुनासिब अंदाज से काम कीजिए, फिर इस तरह मेज़बान जब जाने लगे तो दरवाजे तक उसको रुख्सत कीजिए। इमाम शाबी रहमहुल्ला कहते हैं ज़्यारत करने वाले की ज़्यारत तब मुकम्मल होती है जब मेज़बान इसे दरवाजे तक छोड़ने जाए और सवारी तक पहुँचाए, और ये मेहमान की इज्जत में है और असलाफ का तर्ज़ अमल है, फिर इसी तरह मेज़बान को उस वक़्त तक घर के अंदर वाले हिस्से में नहीं आना चाहिए जब तक कि मेहमान की सवारी रुख्सत ना हो जाए और वो वहाँ से पलट नहीं जाए, यानी कि उनको बाहर भेज के दरवाज़ा बंद कर लें कि जान छूट गई, तो आप देखिए कि ये चीज़ें आपकी हैं, अब अभी तक आप क्या थे मेज़बान, अब क्या बनने लगे हैं आप मेहमान, दिल चाहता है ना कि अब हम मेज़बान हैं तो आप भी मेहमान बने, तब उसके भी चंद अदा आप नोट कीजिएगा। नंबर एक, दावत कबूल करनी चाहिए, जब किसी को दावत पे बुलाया जाए तो बिला उज़र इनकार नहीं करना चाहिए, हाँ उज़र क्या है, नंबर एक दो एक जुमला लिख लें सारी बातें उसमें आ जाएंगी, उज़र क्या है, दीन या जिस्म का नुकसान, दीन का नुकसान कहाँ है, हराम खाना हराम दावत, सोर्स ऑफ इनकम हराम, जिस दावत में बुलाया जा रहा है वहाँ हराम का, बस एक 100 बातों की एक बात है, इसमें शादियों की दावत आ गई, वलीमों की दावत आ गई, मंगनियों उपटनों और जो कुछ सालगिरों के नाम पे है, एक जुमला लिख लें हर दावत कबूल करनी चाहिए सिवाय उस दावत के जिससे दीन में हर्ज आए और जिस्म में यानी सेहत का नुकसान है, कोई ऐसी चीज़ आपको ऑफ़र करता है, आए आइसक्रीम खा कर आते हैं जिसमें मिर्चें डली होंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, अब नुकसानदेह चीज़ है ना, अब एक शुगर पेशेंट को अगर आप कोई बहुत ही ऐसी चीज़ की दावत दें जो उसके नुकसान के लिए, ऐसी दावत को कबूल नहीं करना चाहिए। बुखारी 5178 और मुस्लिम 3514। दूसरी बात है कि दावत कबूल करने में फ़र्क नहीं करना चाहिए, फ़कीर की भी कबूल कीजिए और अमीर की भी कीजिए, दिल दोनों का एक ही जितना होता है, दिल का साइज़ गरीब का भी उतना ही है और अमीर का, और मैंने देखा जिसके पास कम होता है वो ज़्यादा दिल खोलता है, ये भी एक फितरी सी बात है क्योंकि उसके दिल में चाहत ज़्यादा होती है। हज़रत हसन बिन अली एक दिन गरीब लोगों के पास से गुजरे, वो ज़मीन पर पड़े रोटी के टुकड़े खा रहे थे, हज़रत हसन को देख कर दावत दी, आइए हमारे साथ बैठिए, अल्लाह के रसूल के नवासे हमारे साथ जा मिलो, आप अपनी सवारी से उतरे, उनके साथ बैठे, खाना खाया और फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, कि अल्लाह मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता, तो याद रखिए गरीबों की भी कबूल करें। फिर इसी तरह दावत कबूल करने में दूर और करीबी रिश्तेदार का फ़र्क नहीं करना चाहिए, पहले आने वाले की दावत कबूल कीजिए, दूसरे से माजरत कर लें, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट। फिर इसी तरह किसी के घर जा रहे हैं तो इजाज़त लीजिए, हो सकता है वो काम उसके लिए ठीक ना हो तो उस वक्त ना जाइए, फिर बाद में किसी और वक्त में चले जाइए। फिर इसी तरह मेज़बान को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, यानी ना तो वक्त से पहले और ना वक्त से बहुत देर कि जिस पे आपका मेज़बान परेशान हो जाए। फिर इसके बाद मेज़बान के घर में आप दाखिल हुए, तवाज़ो से बैठिए, जहाँ बिठाएं वहाँ बैठिए, यानी कि उनके पीछे पीछे किचन में और उनके पीछे पीछे उनके बेडरूम में। ये बेतकल्लुफ दोस्तों को बुलाने में नुकसान क्या होता है कि सारा घर साफ करना पड़ता है, उन्होंने अलमारियाँ भी खोल खोल के देखनी है, पेंट्री भी देखनी है। सच का मैंने, आपके चेहरों से लग रहा है जी फायदा जी। पूछते भी हर बात है ना, तरकीबें भी पूछते हैं। तो सलीके से बैठिए, हर जगह ना घुसिए घर वाले के पीछे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और चीज़ क्या है कि किसी के घर पहुँचे तो बेल पे हाथ रखने में एहतियात बरते हैं। बाज़ लोग बेल को भी बता देते हैं कि हम आ गए हैं। हमारे पाकिस्तान में तो मारूफ है कि बेल से पहचान लेते हैं ये फलां आ गए। ये आज तो फ़ोन और मैसेजेस हैं, पहले तो लोग आ जाते थे। तो बेल पे ज़रा प्यार से हाथ रखिए, एहतियात से करें, मिलें तो पहले सलाम करें, शिकवा ना करें। अच्छा, हम किसी को मिलते भी हैं तो शिकवा ही। आ गया ख्याल आपको हमारा, बुला लिया आज आपने हमें, याद आ गई आपको हमारी। तो मोहब्बत के बुझे हुए तीरों के साथ अगले का वेलकम ना करें। फिर इसी तरह सलाम करें, अपना तारुफ कराएं अगर पहले से नहीं जानते, नज़रें नीची होनी चाहिए अगर कहीं गैर महरम है, और आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। फिर एक और मेहमान को बहुत ज़रूरी है करना, घर के हालात के बारे में तजस्सुस ना करें। बिला ज़रूरत घर में मत घूमिए, ज़्यादा देर ना रुकिए, घर वालों की इजाज़त के बगैर घर में अंदर ना आइए। कोई बच्चा आके दरवाज़ा खोल दे तो मत जाइए, इल्ला ये कि पीछे से किसी बड़े की आवाज़ आए कि आ जाइए, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही दरवाज़ा खोलने को तैयार होते हैं, उन्होंने खुद बाहर भागना होता है। फिर इसी तरह से अगर आपका रोज़ा है और घर वाला आपको कुछ खिलाना चाहें तो नफली रोज़ा भी इफ्तार कर लेना चाहिए, और ना करने को दिल करे तो घर वालों के लिए भलाई की दुआ करें। ये मुस्लिम की रिवायत है 3520। फिर इसी तरह से मेहमान को आदाब के साथ खाना चाहिए, पीने का और बोझ और तंगी का जरिया नहीं बनना चाहिए। बुखारी 6135। और दिल की गहराई से मेज़बान का शुक्रिया अदा करें, तिरमिज़ी 1955। खुश खुश वापस जाइए, और ये नहीं कि अगर कोई कमी बेशी होगी तो उसको जतलाता रहे। आपको पता है कि एक मुसलमान के दिल में खुशी भरना कितनी बड़ी नेकी है, इस नेकी से हम पीछे रह गए हैं। कोई कमी बेशी हो जाए उसको पीछे कर, हम आके कहते हैं उसमें नमक कम था, उसमें ज़रा चीनी तेज़ हो गई थी, वो ज़रा कड़क ज़्यादा हो गया था, वैसे खातिर उन्होंने बड़ी की। तो ऐसी चीज़ों का ना रखिए, ये बुरी बात है। आपको पता है कि खुश खुल्की नफली नमाज रोज़े से ऊपर बंदे को ले जाती है। और फिर मेहमान बने, मेज़बान को क्या दुआ देंगे? अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी मा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। कितना प्यार बढ़ता है इन दुआओं के साथ, और आज हमारे कल्चर में इन चीज़ों को आम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब आप गए किसी के घर मेहमान बनने। कभी कभी क्या होता है कि आप अकेले जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब आपको बुलाया जाता है तो औरों को भी बुलाया जाता है, तो उस जगह को कहते हैं मजलिस। तो थोड़े से देखते हैं मजलिस के दर आदाब। मजलिस क्या है? जलसा या जलीसू, जलीस कहते हैं साथी को, यानी जहाँ सब गैदरिंग कह लीजिए। ठीक है, तो इसकी भी चंद चीज़ें नोट कर लेते हैं। आप देखिए कि इंसान तनहा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, शुरू से आखिर तक उसको इंसानों की ज़रूरत होती है। खुशी गमी ब्याह ये दीन का हिस्सा है, सोशलाइजिंग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ मैनर्स लिख लीजिएगा। नंबर एक, बुरी मजलिसों में शरीक नहीं होना। खामोशी से बैठा हुआ शख्स भी बुराई में शरीक होगा, अगर वो बुराई से रोकने वाला ना हो तो वहाँ जाने का कोई जवाब भी नहीं है। तिर्मिज़ी 2801। फिर इस तरह दूसरी बात, दूसरा अदब, नीयत के इखलास के साथ मजलिसों में दाख शामिल हों और अजर का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप इखलास में क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि मतलब उन घर वालों के साथ उनसर मोहब्बत का इजहार करें, किसी अच्छी बात की नसीहत कर दें, बीच घर वालों के कोई मसाइल हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें तो आप उनके मसाइल का हल ढूंढें। फिर इसी तरह वहाँ आप कोई इल्म की बात कर सकते हैं, किसी मसलियत की बात करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर तीसरी बात है कि नेक लोगों की मजलिस में बैठिए, उससे ईमान में इजाफा होगा। आपका भी वक्त नहीं ज़ाया होगा और उनका भी वक्त ज़ाया नहीं होगा। इतनी मुख्तसर ज़िंदगी को बुरे लोगों की मजलिसों में बैठकर ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि इंसान पर उसके दोस्त के असरात होते हैं। अद्दीन वाला अलमरु अला दीनी खलीली ही, बुखारी की रिवायत 5534 और मुस्लिम 6692, यानी इंसान पर उसकी दोस्तियों का असर होता है। कितने अच्छे ही लोग बुरे लोगों की सोहबत में बैठे और बुरे बन गए, और इसका अपोजिट भी है। फिर इसके बाद अगली बात है कि दुश्मनों की मजलिस में शिरकत से इज्तनाब करना चाहिए। अब दुश्मनी दीन की है या दुनियावी है, कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो बुरी लगती हैं। इंसान बैक बाइटिंग कर सकता है, तान तशनी हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह रास्तों में मजलिस नहीं लगानी चाहिए, इससे कई गुना होते हैं। राह जातों पर नज़र पड़ती है, रुकावट हो जाती है, फितने बनते हैं। बुखारी की रिवायत है 2465 और मुस्लिम 5563। फिर इस तरह हलकों और टोलियों में बैठने से गुरेज करना चाहिए, बुखारी 6-6, मुस्लिम 5-6-8। फिर इस तरह मजलिस में आने वाला सलाम कहे, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अबू दाऊद 5208। और इसी तरह वही बात जो पीछे पढ़ चुके हैं कि बार बार आने पर दोबारा भी सलाम हो सकता है। आप बैठे थे कुछ और लोग आगे गैदरिंग में, तो वुसअत पैदा कीजिए। सूरत मुजादिला आयत 11, तफस्सहू, याद है आपको लफ्ज़? वुसअत पैदा करो अपनी मजलिसों में, और मुस्लिम 5683। फिर मजलिस में आने वाले को जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए, शरह सुन्ना 3328 इमाम बख़ूवी की किताब है। जगह ना मिले तो सबसे पीछे बैठ जाए। लोग एक हल्का हल्का बनाकर बैठे, आप उसके बीच में नहीं जाकर बैठ सकते, तकलीफ होगी लोगों को, अबू दाऊद 4826। दो लोग बैठे हैं, आप उनके बीच में जाकर नहीं बैठेंगे उनकी इजाज़त के बगैर, अबू दाऊद 4845। एक जगह उठकर किसी वजह से गया तो वापस आने पर वो ही उस जगह का मुस्तहक है, आप उसकी जगह पे नहीं बैठे। बाद खाना लेने जाते हैं, लोग उनकी चेयर ले जाते हैं, इसीलिए लोग उठते ही नहीं, या तो चप्पल कुर्सी साथ ले लेके फिरते हैं, या दूसरे को कहते हैं मुझे खाना डाल दो। तो ये मुस्लिम की रिवायत है 5686। फिर वक्कार और सुकून के साथ बैठिए, किसी को दुख पहुंचाने से बचें, मोहब्बत दीजिए, गीबतें और चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए मजलिसों में, मुस्लिम की रिवायत 162। फिर मजलिस में ज़्यादा हरकत नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी एक अजीब सी बात है, कुछ लोग आते हैं थरथली पड़ जाती है, ना बैठते हैं ना बैठने देते हैं, बेचैन है, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो स्टिल कूप कीप काम। फिर इसी तरह बात करने की ज़रूरत हो तो दुरुस्त बातें करें, बहुत चढ़ 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 नहीं बोलना चाहिए, और मजाक उड़ाने से बचना चाहिए, दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। फिर इस तरह मजलिसों में बैठकर अपने ख़ानदान, औलाद, कारोबार, घर की बातों पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए, यानी फ़ख्रिया बातें नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह मजलिस में बैठे हैं, अपनी अंगूठियों से खेल रहे हैं, अपने फ़ोन से खेल रहे हैं, बैठ के दांतों में खिलाल शुरू हो गए, थूकने लग गए, छींकने लग गए, अंगड़ाइयाँ लेने लगे, नाक में उंगलियां डालने लगे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ये सारी चीज़ों से बचना है। और उंगलियों को चटखाना, बाज़ लोग बैठ के उंगलियां चटखाते हैं, और बाज़ लोग बॉडी लैंग्वेज बड़ी इस्तेमाल करते हैं, हिलते जुलते हैं। तो अपने आप को दूसरों से, अपने दोस्तों से पूछिए आप कैसे हैं, आप बताएं तो फिर नाराज़ भी ना हो। और अक्सर लोग इतने चुलबुले होते हैं, मैं कहती हूँ इनको आज तक कोई दोस्त ना मिला, किसी ने इनको इनके दुख सुख नहीं बताए, लेकिन बहरहाल इससे बचना चाहिए। फिर अगर कोई बात कर रहा है तो उकताहट का इजहार ना करें, सुन लें, 10 दफ़ा भी सुनी हुई है तो 11वीं दफ़ा फिर सुन लें। बार बार खुद नहीं किसी को अपनी बातें सुनाएं, गुफ्तगू ना काटें, कोई बोल रहा है तो बीच में आप ना बोलिए। और मजलिस में ऐसा लिबास पहनकर नहीं जाना जिससे सतर खुलें, मुस्लिम 5499। आधा धूप में और आधा छांव में नहीं बैठना चाहिए, अबू दाऊद 4821। फिर मजलिस में सरगोशी करना हराम है, क्या कहते हैं इसको? इन्नमन नजवा नजवा, बुखारी की रिवायत है 6290 और मुस्लिम 5696। फिर इसी तरह बाएं हाथ पर टेक लगाकर नहीं बैठना चाहिए, जैसे ये देखे मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो मैं यूं लेके के बैठ जाऊँ, नहीं करना चाहिए, यानी इस ये एक अच्छा अंदाज़ नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत है 4848। फिर ऐसी मजलिसों से दूर रहना चाहिए जिनकी वजह से अल्लाह का गज़ब हो, मसलन गीबतें, चुगलियाँ, बेहयाई की बातें, घरों के राज अफशां हो रहे हैं और तोहमतें और बहताने लगाए जा रहे हैं, ये शर की मजलिसें, इनसे दूर रहिए। करें क्या फिर, मजलिसों में अल्लाह का जिक्र और नबी सल्लम पर दुरूद भेजिए, अबू दाऊद की रिवायत 4855। फिर कसरत से हंसने से गुरेज कीजिए, ऐसी मजलिसों में कोई खैर नहीं होती, ये दिलों को सख्त कर देती हैं। इब्ने माजा 4193। कसरत से इस्तगफार कीजिए, मुस्लिम 6856। फिर मजलिस से उठते हुए सलाम कीजिए, अबू दाऊद 5208। फिर इसी तरह बैठने वाले सबको सलाम कीजिए, अगरचे कोई एक आपके साथ बात कर रहा है दूसरा नहीं, इकट्ठे इज्तमाई सलाम कीजिए, बुखारी 6254। लड़ाई झगड़ों से बचें, कई मजलसें एंड पे कहाँ पे ख़त्म होती हैं, लड़ाई पे, फिर कहते हैं चलो अपने अपने बच्चे पकड़ो घर जाते हैं। हैं, और सबसे अच्छी बात कि मजलिस से उठते हुए गुनाहों के कफारे की दुआ पढ़नी चाहिए। किसको आती है दुआ? तिरमिजी की रिवायत है 3433। क्या पढ़ते हैं मजलिस से उठते हुए? आपने इस नोट्स में जगह छोड़ें, कल तक सर्च करके लाएं, सुबह दुआओं के पीरियड में दोहरवा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मोस्टली जो दो मजलिसें होती हैं वो किन की होती हैं, कौन होते हैं हमारे सामने? दोस्त। तो चंद आदाब दोस्ती के बताऊं आपको, कि दोस्ती में आदाब होने ही नहीं चाहिए। दोस्त कहते हैं लो, दोस्तों की महफिल में भी अब अदब आदाब, बहुत अमेरिकनाइज हो गए हैं आप। लोग अमूमन ये सोचते हैं ना, तो चंद चीज़ें दोस्ती की, हम में से हर एक दोस्ती बनाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन दोस्त होता है, उससे दोस्ती की जाती है, और उस शख्स में कोई खैर नहीं कि जो ना किसी से मानूस होता है और ना कोई उससे मानूस होता है। अल मुस्लिमु यालिफु वल मौलफ, उल्फत से है, ये मुसनद अहमद की रिवायत है। करें क्या सच्ची दोस्ती का मेयार? बहुत अहम सवाल है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है आपके मेरे लिए, क्योंकि आज बहुत सारों के दीन से दूर होने की वजह दोस्तियाँ, और कितने ही लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन के करीब आने की वजह दोस्त। आप में से कितने लोग हैं जो पहली दफ़ा अपनी किसी दोस्त की दावत पे कुरान के करीब आए, क्लासेस के करीब आए? अल्हम्दुलिल्लाह सभी। और आपकी वो दोस्तें क्या सौतेली हैं जिनको आपने दावत नहीं दी? हाँ, अपनी दोस्तों से ये पूछिएगा कि आखिर हमारे अखलास में क्या कमी है कि आप हमारे कहने पर इस दावत को कबूल नहीं करते, और आप ये सोचे बैठे हैं कि वो करेंगे ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं, उनको तो ज़रूरत नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात है कि मोमिन के लिए दोस्ती का मेयार क्या है, ये फर्स्ट, इसके काफ़ी सब टॉपिक्स छोटे छोटे आएंगे। पहली बात है कि सच्चे ईमान की अलामत है कि ईमान वाला इससे दोस्ती रखता है जो अल्लाह को पसंद हो, और इससे दुश्मनी और बुग़्ज़ रखता है जो अल्लाह को ना पसंद हो। अबू दाऊद 4681। हम पीछे दो तीन बार यह हदीस नोट कर चुके हैं कि अलहुब्बु फिल्ला वल बुग़्ज़ु फिल्ला। फिर इसी तरह एक बुज़ुर्ग बाप ने अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा तुम्हें किसी की दोस्ती की ज़रूरत पेश आए तो उससे दोस्ती इख्तियार करो कि जब तुम इसकी खिदमत करो तो वो तुम्हारा मुहाफिज़ हो, इसके साथ रहना तुम्हारे लिए जीनत हो, कोई मुश्किल पेश आए तो वो तुम्हारा बोझ हल्का कर दे। यानी दोस्त के करने के कामों में ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। तुम नेकी की तरफ हाथ बढ़ाओ तो वो भी बढ़ाए, तुम्हारी अच्छाई देखे तो इसे उसको कबूल करे, बुराई देखे तो उसे तुम्हें उससे रोके, कोई मुसीबत नाजिल हो जाए तो हमदर्दी करे, जब तुम कहो तो तुम्हारी तस्दीक करे, किसी काम का इरादा करो तो तुम्हें अपना अमीर समझे, और बात में झगड़ा हो जाए तो वो तुम्हें अपना समझे। यकीन करें तीन चार जुमले हैं, लेकिन इसमें बेहतरीन दोस्ती का मेयार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अर्श के गिर्द नूर के मिंबर हैं, और इन पर नूरानी लिबास और नूरानी चेहरों वाले लोग होंगे, वो अम्बिया और शोहदा तो नहीं मगर अम्बिया और शोहदा उन पर रश करेंगे। साहबा ने कहा कि हमें बताइए ये कौन लोग होंगे? आपने फरमाया अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के पास बैठने वाले, और अल्लाह के लिए ही एक दूसरे से मुलाकात करने वाले। ये निसाई की रिवायत है। क्या पता चला? नेक लोगों को दोस्त बनाए। याद रखिए कि वो ग़ालिबन मेरे लिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का कौल है, कहते हैं कि बुरों की दोस्ती से बचो, क्यों? ये तुम्हें नेक लोगों से बदगुमान कर देंगे। और आज देखिए बेतकल्लुफ़ दोस्तों की मजलिस में जो मौलवियों के नाम के लतीफ़े बनते हैं वो किसको नहीं पता, तो बुरे लोग आपको अच्छे लोगों से बदगुमान कर देंगे। फिर इसी तरह वो हदीस जो अभी सुनाई है खुलासे में, कि एक शख्स गुज़रा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक शख्स एक भाई से मिलने एक दूसरे गांव गया। रास्ते में अल्लाह ने फरिश्ते को इंतज़ार के लिए भेज दिया। फरिश्ता कहा, किधर जा रहे हो? कहा, मेरा इधर एक भाई है या दोस्त है। कहा, क्या उसका कोई एहसान है जिसका तुम बदला देना चाहते हो? उसने कहा कि नहीं, कोई एहसान नहीं था। कहा, मैं तो सिर्फ उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो फरिश्ते का जवाब लिख लीजिए जो मैंने पहले नहीं बोला। कहा, तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह भी तुमसे इसी तरह मोहब्बत करता है जिस तरह तुम अपने इस देहाती दोस्त से मोहब्बत करते हो। ये सही मुस्लिम की रिवायत 6549 है। शरायत क्या हैं? तीन शर्तें लिख लीजिए। इस्लाम में दोस्ती की शरायत, नंबर एक, खालिस अल्लाह के लिए दोस्ती कीजिए। ओहब्बु की फिल्ला कहते हैं ना, तो फिर दोस्ती भी अल्लाह के लिए। नंबर दो, दुनियावी कोई गरज का दखल ना हो, और दोस्ती का बायस ईमान और सलाम हो। कौन लोग हैं दोस्ती के काबिल? नंबर एक, जिनसे दोस्ती अल्लाह की खातिर हो, वो शख्स जो अल्लाह को बहुत पसंद हो, अक्लमंद शख्स हो। बेवकूफ़ की दोस्ती नुकसान पहुंचाती है। वो नाक पे ईंट मारने वाला वाक़या तो आपने सुना ही होगा। एक शख्स अपने दोस्त के साथ था, सोने लगा। कहा, चलो तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और जब उठा तो नाक पे से खून बह रहा था। कहा, क्या हुआ? कहा, तुम्हारी नाक पे मक्खी बैठ गई थी, उसको मार रहा था। तो ऐसे दोस्तों के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? ऐसे दोस्त ना बने। फिर इसी तरह एक और मेयार है दोस्ती का, मुत्तकी हो। फासिक अल्लाह से नहीं डरता तो दोस्ती का लिहाज कैसे रखेगा? फिर पांचवी खूबी दोस्त में होनी चाहिए अच्छा अखलाक। बद अखलाक शख्स आपको अपने ज़ाती मुफाद के लिए, याद रखिए, इस्तेमाल करेगा और गुस्से में आ जाएगा। फिर छठी बात क्या है कि दोस्त अल्लाह की किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला हो, और सातवीं बात, बिदात से इज्तनाब करने वाला हो। आदाब नोट कर लीजिए क्विकली दोस्ती के। नंबर एक, एक दूसरे के मददगार बनिए। ज़ाती मामलात के बारे में जैसे आप अपने लिए पसंद करते हैं, दोस्त के मामलात पर भी वैसे ही नज़र रखिए। ज़ुबान का इस्तेमाल दोस्त के लिए वैसे ही कीजिए जैसा आप अपने लिए पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं बेतकल्लफ़ी में आपको कोई मोटी कह दे तो आप भी उसको मोटी कह दें, आप छोटी कह दें तो वो भी कह दे। कभी बेतकल्लफ़ी में भी बहुत ऐसी बात ना बोलें जिससे अगले का दिल टूटे। फिर खुशी और गम के मौके पर इत्तला दीजिए अपने दोस्तों को। दोस्त बीमार हैं तो उनकी बीमार पुरसी कीजिए। कोई उनके घर पे काम आ पड़ा तो उनका तावन कीजिए, लेकिन शर्त है तावनु अलल बिर्री व तकवा। ऐसे गुनाह के कामों में नहीं शामिल होना कि जो सारा वबाल बाद में आप पे भी पड़े। फिर इस तरह दोस्तों के साथ गुफ्तगू में झगड़े का अंदाज नहीं होना चाहिए, जो कि अमूमन होता है, और बाद में क्या कहते हैं, बेतकल्लफ़ी बहुत है। फिर दोस्त की छुपी हुई बातों की टोर ना रखिए। दोस्त कोई राज कर ही दे आपके साथ शेयर तो उसको ओपन ना कीजिए। दोस्त की गलतियों को छुपाइए। इमाम शाफ़ी के नज़दीक ये खैर ख्वाही और जीनत का बायस है, और जो लोगों के सामने नसीहत करे वो अपने दोस्त को रुसवा करता है। दोस्त को उसकी बातें तन्हाई में बताइए। फिर इसी तरह हुस्न ज़न रखिए अपने दोस्तों से। क़तअ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। अगर वो गुनाह कर रहे ना तो तौबा का इंतज़ार कीजिए और वाज़र नसीहत कीजिए। फिर इसी तरह दोस्ती में वफा और साबित कदमी ज़रूरी है, यानी बेवफाई ना कीजिए, दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर दोस्त फौत हो जाए तो उसकी औलाद और उसके घर वालों के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए। दोस्त के दुश्मन से ताल्लुक़ नहीं बनाने चाहिए। अरब लोग कहते हैं कि तीन लोग आपके दुश्मन हैं, एक आपका दुश्मन, एक आपके दुश्मन का, आपके दोस्त का दुश्मन, और तीसरा आपके दुश्मन का दोस्त। तो दोस्ती में ये ख्याल रखना चाहिए। फिर दोस्त के मिलने पर उसको खुशामदेद कहिए। अपने घर वालों से ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए दोस्तियों को, ये भी एक पॉइंट है छोटा सा। बस दफ़ा हम कुछ लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं फिर अपने घर वालों को भूल जाते हैं। वक्त बे वक्त दोस्तों के घर जाना, हर वक़्त ही उनकी मदद करने के गुमान में अब अपने मर्द बेचारे शोहर को खाम खाम में आप एक मजबूर कर दें कि किसी वक्त पे वो गुस्सा ही करे, हद में रहिए। देखिए बहुत सारे लोग दोस्तियां करते हैं लेकिन उसकी हदों को नहीं निभा पाते। तो हर चीज़ अपनी वक्त पे अपनी जगह पे अच्छी लगती है। मुशक्क़त में नहीं डालना चाहिए दोस्तों को, क्योंकि मुरव्वत में आकर वो नो नहीं कहेंगे लेकिन दिल से नहीं करेंगे। फिर तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए दोस्ती में, उन्स और अपनाइत होनी चाहिए, अजनबियत दूर हो। अगर मर्द हैं तो दोस्त हैं तो इकट्ठे नमाज़ पढ़ने जाएं, और अगर औरतें हैं दोस्तों में आप तो मिलकर जमात नमाज का अहतमाम कर लीजिए ताकि जिसने नहीं पढ़नी थी वो भी पढ़ ले। और इसी तरह अपनी दो अपने दोस्तों और उनकी औलाद के हक़ में दुआ खैर कीजिए, और दोस्तों का तذکرہ हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में अदा कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हकीकत में अपने दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं, उनके दोस्त सोच भी नहीं सकते कि वो बाद में उनके बारे में क्या कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है फिर ब्रेक देती हूँ, तोहफा देना, क्योंकि ये सारा एक ही सीक्वेंस चल रहा है ना। आप दोस्तों को तोहफे देने हैं या तोहफे के बारे में इस्लाम क्या कहता है, तो तहादू तहाबू अल अदबुल मुफरत 594, ये भी इमाम बुखारी ही की किताब है। ये सही बुखारी नहीं है बल्कि दूसरी बुक है, लेकिन सही रिवायत है अबू हुरैरा से, तहादू तहाबू, तोहफा दो तो मोहब्बत बढ़ती है। तो मुसलमानों के दरमियान में उल्फत और मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ तोहफों का लेन देन है। ताल्लुकात फीके हो जाते हैं इसके बग़ैर, नए ताल्लुकात हों तो बन ही नहीं पाते बाज़ दफ़ा। करें क्या? नंबर एक, फिर वही क्वेश्चन, क्यों दूँ? अल्लाह की रज़ा के लिए तोहफ़ों का लेन देन कीजिए। अल अदबुल मुफरत 595। हम अमूमन क्या कहते हैं? रस्म व रिवाज, दिस एंड दैट। दूसरी बात है, तोहफ़ा देने का आगाज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले रिश्तेदारों को, फिर करीबी हमसायों को दीजिए, फिर मुश्तबे और हराम चीज़ों का हदिया नहीं देना चाहिए, तोहफे को हकीर नहीं समझना चाहिए। बुखारी 2566, मुस्लिम 2379। फिर तोहफा रद्द नहीं करना चाहिए, अल अदबुल मुफरत 157। हदिये का बदला भी देना चाहिए, बुखारी 2585। लेकिन बदले के लिए नहीं देना चाहिए कि मैं किसी को दूं ताकि वो भी मुझे फिर उससे बढ़कर दे। इसी तरह सरकारी ओहदों पे फाइज हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के इवज या वहाँ के क्लाइंट्स, उनसे हदिये नहीं लेने चाहिए। सही मुस्लिम है, अब बुखारी का हवाला लिख लीजिए 6979। बाज़ दफ़ा फिर वो तोहफे रिश्वत बन जाते हैं ना, उसके बदले में कुछ वो फिर आपसे लेंगे। फिर मुनासिब तोहफ़ा दीजिए, ये नहीं कि जो तोहफे में चीज़ जाए हो तो अच्छी लेकिन जिसको आप दे रहे हैं उसके काम की ना हो। और तोहफ़ा देकर एहसान नहीं जतलाना चाहिए, अब सूरत अल बकरा 264। और आप देखिए कि तोहफे और रस्म का फ़र्क समझ आ गया आपको? पीछे जिधर उम्मीद लग जाए दुल्हन के घर वालों की तरफ से लड़के की माँ को 5 तोले के कंगन मिलेंगे, ये तोहफा है कि रस्म? बल्कि ये इससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। ऐसे ही फिर वो कहते हैं, अच्छा चलो फिर हम लड़के की भी माँ को दे देते हैं। तहादु तहाबु, तो स्टेज पे खड़े होके 500 लोगों के बीच में देने की क्या ज़रूरत है? जब मर्जी दें, जिधर मौका मौका बन जाए कि इस मौके पे देना। कई लोग देखिए दुल्हन की माँ को या दूल्हे की माँ को वहाँ जाकर लिफाफे दे रहे होते हैं पैसों में की सूरत में, और वो भी पहले पकड़ते साथ कहते क्या ज़रूरत है, और साथ ही अंदर रख रहे होते हैं बैग में के, और टटोलेंगे कि कितने कितने ज़्यादा नोट हैं, तो भाई क्या ज़रूरत थी तो दे दें वापस। कई लोग हमारे यहाँ देखे तो क्या ज़रूरत थी इसके लाने की, ये अच्छा तोहफा है, तो मैं तो कहूँगी दे दें वापस फिर, मैंने गलत काम किया मुझे माफ़ कर दें। ये तकल्लुफाना जुमले होते हैं। आप मुझे बताइए, अक्ल में ये बात आती है? आप पहले होते थे घरों में शादियाँ, चलो भाई घर में आप गए शादी का तोहफा ले गए, ठीक है। आप शादी हाल में वो भी हैं और आप भी, और वो आपसे भी ज़्यादा कॉन्शियस है अपने पहनने ओढ़ने पर, और आप वहाँ तोहफे दे रहे हैं घूमते। कई दुल्हनों की माओं के पर्स फिचोरी होते हैं, मासी ले जाती हैं, अब वो बेचारी वहां आपके वो तोहफों के डब्बे उठाएं क्या करें। उसका भी हमने एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा शाइस्ता किस्म का, शाइस्ता से माजरत के साथ, और वो भी शाइस्ता बैठी हैं उनसे भी माजरत, हाँ लिखा नो बॉक्सेस प्लीज, तो बॉक्सेस के बगैर तोहफे ले जाइए, डब्बे ना डालें उसमें खाली तोहफा। आप क्यों जल्दी समझ जाते हैं लोगों की बातें? हैं हाँ, तोते के साथ डोनेशन बॉक्स की तरह का बॉक्स, बिलीव मी। हाँ से लोगों ने कहा तोहफा लेना जरूर है, हम हल निकाल लेंगे। देखिए ना, अब आप अगर अकल से सोचें, क्या ये सारे तोहफे आज ही इस्तेमाल हो जाने हैं? कई दिन तक वोट खुलते भी नहीं होंगे, और वो पर्स और वो जो पैसे हैं वो यूज़ होते हैं, पहले दे दीजिए, बाद में जाके दे दें, क्या होगा? नहीं, शर्म आती खाली आ जाते हुए। कई लोगों को मैं देखा, सिर्फ इसलिए नहीं जाते किसी दावत में या शादी में कि कुछ लेके जाना पड़ेगा, नहीं जाते। क्या करें फिर, वो हर जुमे को जो शादी है तो हर जगह वो कैसे इतने पैसे दें और इतने तोहफे दें? इस चीज़ को ख़त्म करें, बड़ी जुरत की बात है। किसी एक ने कहा हज पे गाना था, इतने लोग गाते हैं, क्या करें फिर देना पड़ता है। मैंने कहा इसका एक हल है, आप इस दफ़ा हज करके आ रही हैं, आप किसी को कुछ भी ना दें, तो अगली दफ़ा आप हज पे जाएंगी कम अज़ कम आपको तो कोई कुछ नहीं देगा। कितना बेतुक्कापन है, कोई कहीं जा रहा है तो तोहफा, कोई आ रहा है तो तोहफा। और आप देखिए कि ये मोहब्बत बढ़ाने से ज़्यादा फिर बिगाड़ का भी जरिया बन गया। और हमारे यहाँ तोहफे के लिए क्या कहते हैं, ये लेने देने के काम आएगा, जो बेकार चीज़ होती है कहते रख दो, ये किसी के काम आ जाएगी ना। और फिर बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। उसको दें, देखिए मैं तो एक रुपये की भी चीज़ उसको नहीं दूंगी जिसको मेरा दिल नहीं करेगा। लेके भी गए तो वापस लेंगे, और किसी को दे लाए तो आप अपनी भी चीज़ उतार के दे दें। तो फिर मैं हुब है, मोहब्बत है। तो बहरहाल इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहती। तो एनिवर्सरी पे तोहफा ना मिले तो मियाँ से नाराज़गी जी, क्या ख्याल है आपके? मियाँ आपको कुछ ना दें तो फिर क्या करेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या करेंगी फिर? अच्छा जी, उनको याद है भी इतनी पुरानी बात
है?
माशाल्लाह, अंकल कहते होंगे भाई ये वाकई, मेरा ख्याल है इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो जाती। अच्छा जी, अच्छा जी, आपको कुछ ना मिले तो आप क्या करेंगी निशात? नहीं तोहफा लेती हैं कि नहीं? जिसमीना आप? आपसे जुमले भी नहीं पूरे अदा हो रहे अभी दिल से नहीं सोचा जी। मुबीहा, वो नाराजगी से बचते हुए जी। आप वहीदा? अच्छा, 14 फरवरी को भी तोहफे लेने चाहिए हैं? अच्छा, ईदी का तोहफा, ईदी का जोड़ा जी। सुने, आप इनका दुख सुनिए प्लीज सारे, बल्कि सॉरी इनके हस्बैंड का दुख उस दिन तो फ्री भी फूल मिल जाते हो। अब आप देखिए जी, जी प्लीज
मेरे मियाँ ने भी रिसेंटली जब तक मिल गए मौके पर मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द गिफ्ट ही प्रिंटेड आउट द पिक्चर ऑफ द बिग इयररिंग्स। इतनी बड़ी पिक्चर थी वो, ये उन्होंने दी कि खरीदी इसलिए नहीं कि कहीं तुम रिटर्न ना कर
तो अगर रिटर्न करने हैं तो पहले ही देख लो आप देखिए कि मोहब्बत को इजहार की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत खुद ही जाहिर होती है जी। आप पीछे से शाहीन? क्या आप इसको करो ताकि वेट लूज हो यूज करें जी। आप? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उस्तादों को तोहफे देने चाहिए? औज़ुबिल्लाह, जीपीएस को तोहफे देने चाहिए? अंसारुल्ला को तोहफे देने चाहिए? क्या तोहफा देना चाहिए? दुआएं दें। देखिए कुछ चीज़ें जो ना वो रस्में बन जाती हैं। कोई अंदर आए फूलों की बकेट, मुझे किसी ने कहा कि आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा क्या? कहती है आप लोगों ने आपको फूलों के बकेट देना छोड़ दिए हैं, मतलब आपस में बातें शुरू हो गई हैं सोसाइटी में। मैं क्यों? कहती उनको पता है आपने पकड़ के कहना इसको अलबरका में दे दो, ऑक्शन कर दो, तो लोग सोचते हैं कि नहीं फिर आपके पास तो रहता नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं कामयाब हूँ? अब देखिए $20 का तो आता ही होगा ना एक फूलों का, ऐसी है ना, $20 पाकिस्तान के आज भी मेरा ख्याल है 2500 रुपये बनते हैं, 2500 रुपये बनेंगे ना, 2500 रुपये में आज भी आपको बताया कि मेरा गुमान है कि 2500 में कोई 2500 में 100 ईंटें आ जाएंगी, ये मेरा गुमान है, मैं डबल चेक करवाती हूँ। वो 100 ईंटें आप किसी जगह जाके लगा दें, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, तो दीवार बन जाएगी ना। बस दफ़ा हमारे ये तकल्लुफात बढ़ जाते हैं इतने, जिसकी वजह से फिर हमारी पूरी नहीं बढ़ती। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा, अब जिसको जो मर्जी दें, लेकिन कीमती। फिर ये पूछना, अच्छा ये दुल्हन का तोहफा भी पूछना चाहिए, मियाँ ने क्या दिया। बेचारे मुंह दिखाई में दिन देने के लिए, सिर्फ ये कि दूसरों को मुंह क्या दिखाएंगे, एक तो वो मुंह देखते हैं, एक दूसरा भी इशू है कि मुंह में क्या। देखिए ये फिर ना बातें होती है, एक बहन को डायमंड का मिल गया, दूसरा बेचारा डायमंड का सेट नहीं दे सका, उसने सिर्फ सोने की अंगूठी दी, तो कहेंगे तुम्हारे मियाँ को तो तुमसे प्यार ही नहीं है। और वो सास क्या लाएंगी, बरी में तोहफे आते हैं, तुम्हारी तो कदर ही नहीं, तुम्हारी बहू, तुम्हारी सास तो सारी तुम्हारी वो कहना चाहिए कि शॉपिंग जब वो सदर बाजार से करके आ गई, ये देखो मेरी सास किस बुटीक से लेकर आई है। ये शादियों के जोड़े तोहफों की सूरत में जेवरात, याद रखिए ये है वो तुमार इसरा हूँ वलगलाल अल्लाह थी, जिसमें आज उम्मत खोई हुई है। तो जाइए आप छोटी सी ब्रेक करके आए। जी, दोस्त लोग, दोस्तों को मतलब जो आपके दोस्त हैं ना, वो अल्लाह की किताब और सुन्नत को मानने वाले हों, फिर आप उन पर असर कीजिए। देखिए हम सब आइडियल माहौल में नहीं रह रहे। अगर आपका सवाल मैं दोहरा के सबको ही जवाब दे देती हूँ कि आप देखिए कि अगर किसी जगह इल्म ही नहीं आम, तो फिर ये तो होगा, तो आप सबको छोड़ दें। बात लोग कहते हैं मैंने कोर्स ज्वाइन किया, फिर मैंने अपनी सारी दोस्तों को छोड़ दिया, यानी गोया कि तलाक दे रही कि अब आपका मेरा खत्म। नहीं, आप उन तक पहुँचेंगे। एक बात याद रखिए कि सच में बड़ी कशिश है, हक हक होता है जब आप उसको मानने वाले बनते हैं। जजमेंटल ना बने, बहुत बातें ना करें, आप उनसे मोहब्बत से रहें, यकीन करें उनको तोहफे दें। $1 का अगर आप एक चॉकलेट या अगर उनकी पसंद का कोई खाना लेकर हर महीने में उनके घर देती रहना, तो वो उनको लेकर आएगा। लेकिन यह कि ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं खींच लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए ब्रेक का 1 मिनट गुजर चुका है, इंशाल्लाह ताला वापस मिलते हैं। अभी तो हमने बहुत कुछ पढ़ना है अभी इंशाल्लाह इसमें से। अभी क्या सुना है आपने? लाइट बंद कर दीजिए प्लीज। ये पूछिए जी, आप पूछिए। ये सबके बीच में